جیسے آپ اللہ کی قسم کھا کے کوئی بات کرتے ہیں تو مراد یہ ہوتا ہے کہ اللہ گواہ ہے کہ میں یہ بات سچ کہہ رہا ہوں. اس طرح سے وہ چیز گواہ ہوتی ہے. قرآن کریم میں جتنی اس طرح کی قسمیں ہیں ان کو اگر دیکھا جائے, اور پھر جنہوں نے کتابیں الگ قسموں پہ لکھی ہیں پھر بحثیں یہ کی ہیں, تو اس کے بعد قرآن مجید جو سٹیٹمنٹ دیتا ہے دراصل وہ اس پر شاہد ہوتی ہے, اس میں اس کی سچائی کی علامات اور واضح دلائل ہوتے ہیں. یہاں بھی اسی طرح سے ہے, قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں, ولا اقسم بالنفس اللوامہ, ولا تو اسی طرح ہے جیسے پہلا لا تھا, اقسم بالنفس اللوامہ, نفس اللوامہ کی قسم کھاتا ہوں. نفس میں نے تو ہوتا ہے جان, نون فے سین مادہ, انفس نفوس اس کی جمع ہے, نفسن ہو تو اس کے معنی سانس ہوتے ہیں بریت, اور نفسن پرسن شخص. ان نفس اللوامہ, نفس جو کہ مونس سمائی ہے اس کی صفت مونس آئی ہے, لوامتن جس پر الف لام لگا ہوا ہے. لوامہ کا مادہ لام واو میم ہے, لام یلوم لومن کے معنی ہے ملامت کرنا, کسی کو شرمندگی دلانا, پشیمان کرنا کہ میں نے سمجھ لے اگر اور ہی لفظ بدلنا ہو تو. ورنہ خود اسی کا مصدر لام یلوم لومن و ملامتن, وہ ملامت اردو میں استعمال ہوتا ہے, صرف اتنا فرق ہے کہ عربی میں چھوٹی تے سے لکھتے ہیں اردو میں لمبی تے سے لکھتے ہیں, اس لیے لام یلوم لومن میں نے ملامت کرنا, دوسرا کوئی لفظ ترجمے میں لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور لوامہ, لوام کے معنی مبالغے کی وجہ سے ہوں گے, بہت زیادہ ملامت کرنے والا, اور مؤنث ہے النفس اللوامہ, وہ نفس جو بہت زیادہ ملامت کرنے والا ہے. یہاں یہ نفس کے لیے جو لوامہ صفت آئی ہے یہ ایک انسان کی کیفیت ہے کہ وہ جب کوئی برائی کرتا ہے, اور بعض نے تو یہ بھی بیان کیا کہ نیکی میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہے تو وہ اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے کہ تو نے یہ غلط کیا, تو اسے یہ غلط ہوا, نماز میں آج تیری توجہ نہیں تھی, یا فلاں چیز میں, یا تیری نیت میں خرابی واقع ہو گئی. یعنی نیک آدمی تو اس بات پر بھی اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے کہ حق ادا نہ ہوا, اور برائی کر کے پھر ملامت کرنا یہ ایک احساس گویا کہ ہوتا ہے کہ میں نے برا کام کیا. اس سے پھر قرآن کریم میں تین استعمال آئے ہیں, لوگ اس کو بیان کرتے ہیں کہ نفس امارہ, نفس لوامہ, نفس مطمئنہ. نفس امارہ کا لفظ سورہ یوسف میں آیا ہے, لوامہ کا لفظ یہاں آیا ہے, مطمئنہ کا لفظ آگے تیسویں پارے میں آیا ہے, یا یہ تو ہم نفس المطمئنہ. امارہ کے معنی بن کیے جاتے ہیں بہت زیادہ حکم دینے والا, اور پھر نفس امارہ انسان کی وہ اندرونی کیفیت جو اسے برائی پر ابھارتی ہو, ہر وقت برائی پر ابھارتی رہے کوئی نہ کوئی برا کام کرنے پر. لوامہ یہ ہے کہ نیکی میں کوتاہی ہو یا برائی کر بیٹھے تو پھر اس کے اندر سے ایک ندامت اور ملامت اٹھتی ہے کہ تو نے یہ کیوں کیا, میں نے یہ کیوں کیا, خود ایک پچھتاوا ہوتا ہے. اور مطمئنہ یہ ہے کہ جس پر بدی کی ترغیبات کا یا دباؤ کا کوئی اثر نہ ہو بلکہ وہ پورے سکون اور اطمینان کے ساتھ ہو. تو یہ کیفیتیں ہیں تصوف والے ان کے اپنی اپنی تشریح کرتے ہیں. یہاں نفس لوامہ سے مراد جو لیا گیا ہے کہ انسان جو ملامت کرتا ہے اپنے آپ کو نیکی میں کمی رہ جانے پر یا بدی کرنے پر, یہ اور قیامت کا دن اس بات پر گواہ ہیں. اب کس بات پر گواہ ہیں یہ اگلی عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان ضرور دوبارہ زندہ کیا جائے گا. یہ استدلال ہے قرآن کریم کا. قرآن کریم نے قیامت پر کئی استدلال کیے ہیں, ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہاں نیکی بدی کی سزا انعام نہیں ملتا, لہذا ایک اور وقت ہونا چاہیے جہاں نیکی بدی کے اصل نتائج سامنے آئیں. یہ بھی تقاضا کرتا ہے اس بات کا کہ ایک دن ایسا ہونا چاہیے. لوگوں میں اختلاف ہیں, ہزاروں مذاہب ہیں, سینکڑوں خیالات ہیں, ہر کوئی کہتا ہے کہ میں حق پر ہوں. اس میں بھی کوئی ایک وقت ایسا آنا چاہیے کہ جہاں سارے اختلافات کی اصل حقیقت سامنے آ جائے. اس لیے اختلافات کو بھی قرآن کریم نے قیامت کے دلیل اور ثبوت اور ضرورت کے طور پر بیان کیا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ انسان کے اندر یہ جو چیز رکھی گئی ہے کہ وہ برائی کر کے کیوں پچھتاتا ہے, برا کام کر کے اپنی کوتاہی پر کیوں معذر اس کو ایک افسوس ہوتا ہے, یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کے انہیرنٹ کوئی رکھی گئی ہے چیز कि वो खुद अपना एहतसाब करता है, इसका मतलब है उसका एहतसाब होगा, उसको जो अच्छाई बुराई का एहसास होता है और उस पर मलामत करता है, तो ये गोया कि नेचुरल एक चीज़ इनबिल्ट चीज़ है जो इस बात का सबूत है कि इंसान के अमाल की जजा सजा होगी। इसलिए नफ्स लवामा की जो कैफियात हैं वो उसके दलील के तौर पर बयान की गई है। और बात यूं नहीं की गई, आगे फिक्रे में बात इस और तरीके पर आई है कि फरमाया अयहसबुल इंसान अल्लन नजमा अज़ामा आ इस्तफामिया है, यहसबु हसब यहसबु गुमान करना, क्या गुमान करता है अल इंसान इंसान। यहां इंसान से मुराद, अल से मुराद जिन से इंसान, पूरी जिन्स के सब इंसान क्या ये ख्याल करते हैं, ये तो मुराद नहीं है। इससे मुराद फिर कोई खास इंसान है या एक ग्रुप जो मुनकरीन क़यामत का है वो है। तफसीरों में तो खैर लिखा होता है कि जी फलां आदमी ने ये बात कही थी तो उस मौके पर आयत नाजिल हुई थी, ठीक है। जो मुआसिर थे कुरान के, कंटेम्प्रेरी थे, जिनके सामने कुरान नाजिल हो रहा था, उन्हें तो कुरान की आयत से वो दो चार दिन पहले वाला वाकया ज़हन में आता था कि यार ये तो उसी की बात हो रही है। तो वो अपनी जगह दुरुस्त है कि उस वक्त किसी खास आदमी ने कोई बात कही और उसके लिए ये कहा गया, लेकिन आम मुराद फिर यहाँ इंसान से वही इंसान जो कि मुनकर है क़यामत और बासर हशर नशर का। क्या आदमी ये सोचता है, इस लिहाज से लाम अहद होगा जो हमारे ज़हन में है कि फलां किस्म का आदमी, लाम जिन्स नहीं। अल्लन नजमा, ये जो अल्लन है ये असल में है अन लन के, हसब के बाद अन के, और अन और फिर आगे लन नजमा, हम नहीं जमा करेंगे हरगिज। तो ये अन कहीं कहीं कुरान करीम में नून इमला में भी नहीं आता, अल्ला में भी बाज़ दफ़ा नहीं आता, इन ला वो भी बाज़ दफ़ा इल्ला लिखा जाता है। तो ये इबारत में देख लिया जाता है कि यहाँ वो महजूफ हो गया है, क्योंकि वो लिखा भी जाए तो पढ़ा नहीं जाता। अन लन अगर लिखा भी होता तब भी पढ़ते अन लन, क्योंकि नून साकिन तो आगे लाम के साथ अलिफ मिल जाता, नून तो नहीं पढ़ा जाना था, इसलिए उन्होंने इमला में ही अल्लन लिख दिया। लन नजमा जमा यजमा के मैंने है इकट्ठा करना, जमा करना। अल्लन नजमा ये बात कि हम हरगिज जमा नहीं करेंगे, ये अन मसदरिया है गोया के, वो यहसब कब मफूल होके आना था। इजामा, इजाम अजमुन की जमा है, अजमुन के मैंने होते हैं हड्डी, उजमुन बड़ाई को भी कहते हैं, अजम याजमो बड़ा होना, और अजम याजमो के मैंने किए जाते हैं कुत्ते को हड्डी डालना। अब ये दो बिल्कुल अलग अलग मैंने हैं, आपस में इनका कोई ताल्लुक नहीं, इसी मादे से लफ्ज अजीम बना है और इसी से ये अजम है। अजमन एक हड्डी और अजामन उसकी जमा है हड्डियां। अल्लन नजमा का मफूल है इजाम, कि हम नहीं जमा करेंगे उसकी हड्डियां। अल्लन नजमा इजाम, इंसान क्या इंसान ने ये सोच रखा है कि हम उसकी हड्डियां इकट्ठी नहीं करेंगे, और इस हड्डी इकट्ठी करने से मुराद है दोबारा पैदा करना, क्योंकि काफरों का इस्तदलाल ये था कि इंसान मर जाता है मिट्टी में मिलकर खाक हो जाता है, बाज़ दफ़ा हड्डियां मुद्दतों तक रहती है, हड्डी एक अंसर ऐसा है इंसान का जो शायद बहुत अरसे तक बरकरार रहता है या बिल्कुल तहलील मुद्दत के बाद जाके होता है। तो वो कहते थे जब हड्डियां ही बिखर गई तो फिर दोबारा वो आदमी कहां से बनेगा, यही उनका इस्तेदलाल था, इसी को यहां बयान किया है कि हम उसकी हड्डियां दोबारा कहां जमा करेंगे। मुराद है कि हम उसको जो दोबारा नहीं खड़ा करेंगे, ये क्या ख्याल किया है कि हड्डियां बिखर जाने की वजह से ये मुमकिन नहीं होगा कि अब उसकी हड्डियां दोबारा इकट्ठी करें और उसको जिंदा करें। भला, देखिए नफी के जवाब में आया है, यह बात गलत है, बल्कि असल बात यह है, सवालिया भी आए और फिर वैसे नफी भी है, अल्लन नजमा इजामा के नहीं होंगी जमा हड्डियां, तो कहा बला जरूर जमा होंगी, यानी ये नहीं है बात। بلا نفی کے انکار کے لیے آتا ہے اور بلکہ اس کے مخالف بات کو ثابت کرنے کے لیے آتا ہے. ہاں کیوں نہیں, قادرین, ہم قادر ہیں. یہاں ایک چیز گرامر کی نوٹ کیجئے, اردو ترجمہ یہی کیا ہے, ہم ٹھیک کر سکتے ہیں, بلکہ اصل لفظ کو بھی ویسے بھی چھوڑ گئے ہیں. بعض نے کیا ہے ہم قادر ہیں, اور انہوں نے کیا ہے ہم ٹھیک کر سکتے ہیں. ٹھیک کر سکتے ہیں یعنی ٹھیک طور پر کر سکتے. اصل بات یہ ہے کہ اگر یہ ہم قادر ہیں ہوتا تو یہ فکرہ ہونا چاہیے تھا قادرون رفع میں ہوتا, نحن قادرون, ہم قدرت رکھنے والے ہیں. یہ نصب یا جار کیوں آئی ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ قادرین پہ کس, نہ کوئی انا آیا ہے شروع میں, نہ یہ کسی کا مفعول ہے, نہ کچھ, اس کی نصب کی وجہ کیا ہے؟ یہ ہے گرامر کی بات. یہاں قادرین حال ہے, پہلے قدر یا قدروں کے معنی سمجھ لیجیے. قاف دال رے مادہ, قدر یا قدروں کا ایک معنی ہے اندازہ کرنا, اور اسی سے تقدیر وغیرہ, قدر یا قدر, اندازہ کرنا, اندازے سے دینا. پھر اسی اندازے سے دینا کے معنوں میں, یہ کم کرنا کے معنوں میں بھی قرآن کریم میں آیا ہے, یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, کسی کو زیادہ دے دیتا ہے روزی, کسی کی کم کر دیتا ہے, یعنی ایک اندازے سے دیتا ہے, اصل مراد ہے. یہ تو ہے قدر یقدر بغیر صلہ کے ہو تو. اگر قدر کے بعد علا کا صلہ لگ جائے, قدر ہو کا معنی تو ہوگا اس نے اس کا اندازہ کیا, لیکن قدر علیہ کا معنی ہے اس پر قادر ہوا, اس پر قابو پا لیا, اس پر قدرت رکھی. قدرت, قادر, یہ اردو میں مستعمل لفظ ہیں, تو علا کے صلے کے ساتھ یہ معنی ہوتا ہے. یہاں آیا قادرین علا, یعنی اصل عبارت ہے نحن نقدر علا, ہم اس بات پر قدرت رکھتے ہیں کہ, اس سینس میں ہے. لیکن آیا قادرین, قادرین قدرت رکھنے والے ہیں, اور حال ہے یا اصل عبارت یوں بنتی ہے کہ پیچھے ہے اللہ نجما عظام, آگے کہا گیا ہے بلا نجما عظام قادرین علی ان نسویہ, بنانا ہم اس کی ہڈیاں اکٹھی کر دیں گے اس بات پر قدرت رکھنے والے ہوتے ہوئے, یعنی اس طاقت کے ساتھ جو ہمارے اندر ہے اس کی ہڈیاں, گویا کہ نجما عظام کا جو ضمیر فاعل ہے, ضمیر تعظیم کہیں جب اللہ تعالیٰ کے لیے آئے, ضمیر فاعلین نہیں کہتے, اس کا حال ہے یہ. ہم اس کو اکٹھا کریں گے یا اس کی ہڈیاں اکٹھے کر دیں گے, نجمعہا یا نجمع عظامہا, قادرین علی ان, اس بات پر قادر ہوتے ہوئے کریں گے اکٹھے. نسویہ, ان نسویہ, کہ ہم برابر کر دیں, ٹھیک ٹھاک کر دیں. سوا یسوی تسویتن, اس کا بنیادی معنی ہوتا ہے برابر کر دینا. مثلا سوت تراب علی القبر, قبر پر مٹی ہموار کر دی, جب دفن دین کرنے کے بعد اس کی مٹی ٹھیک ٹھاک کر کے قبر بناتے ہیں, اس کو بھی سوا یسوی کہتے ہیں. پھر سوا یسوی کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو فنیشنگ ٹچ دینا, یعنی وہ قبر وغیرہ بنانے کے بعد آخر پہ مٹی کو ٹھیک ٹھاک کرتے ہیں, تو اس طرح سے سوائی و سوی تسویتن کا معنی کسی چیز کو مکمل کر دینا, پورے کا پورا بنا دینا, ٹھیک ٹھاک کر دینا. اسی سے سویون قرآن کریم میں لفظ آیا ہے بشرن سویہ, کہ ٹھیک ٹھاک آدمی جس میں کوئی بیماری, کوئی کمی, کوئی خرابی نہیں نظر آتی, صحت مند, تندرست, چست, چلاک, اس آدمی کو کہتے ہیں رجل سوی. تو سوا کے معنی ہے نیند آ گئی بھائی, تم تو جھوم رہے ہو, اچھا سوا یو سوی, ٹھیک ٹھاک کرنا, انہی معنوں میں مکمل کرنا. قرآن کریم میں آتا ہے خلاقہ کا فسوا کا فعدلہ کا, اللہ نے تجھے پیدا کیا پھر اس نے تجھے ٹھیک ٹھاک بنا دیا. اس طرح سے ٹھیک ٹھاک بنا دینا کا یہاں معنی ہے. اور نسویہ, ہم ٹھیک ٹھاک کر دیں گے, ان نسویہ, کہ ہم ٹھیک ٹھاک کر دیں, پورے طور پر, مکمل طور پر کر دیں, بنا دیں. इसीलिए यहां तर्जमा जो आपके सामने है, इन्होंने कहा कादरीन अला अनुसव्या, क्यों नहीं, क्यों नहीं तो हुआ बला का तर्जमा, हम ठीक कर सकते हैं। वो ठीक का वाला लफ्ज तो लिया सव्वा युसव्वी से, क्योंकि उसका मैंने ठीक ठाक कर देना, मुकम्मल कर देना, और जो कर सकते हैं वो कादरीन के से मैंने लिया है। वरना इबारत यूं नहीं है कि बला नस्तती हो अनुसव्या, वो उस तरह नहीं है, मैंने यूं कर लिया, हम ये कर लेंगे, यानी उसकी हड्डियां जमा कर लेने पर हम कादिर हैं, और बल्कि इतनी कुदरत हमारी तो है कि नुसव्या बनाना कि हम उसकी उंगलियों के पुरों को भी ठीक ठाक बना लें। बनाना हूं, बनान का मादा बेनून नून है, बनना यह बिन्न वर्ब इस्तेमाल होता है, कुरान में कहीं नहीं हुआ, बल्कि इससे किसी किस्म का कोई फेल नहीं इस्तेमाल हुआ, और इसके मैंने साबित कदम रहने के बुनियादी तौर पर हैं। बल्कि अजीब बात है कि बनीन फ़ईल का वजन जो कि बगैर बनून की नसब जार किया है, वो भी लफ्ज इस्तेमाल होता है बनीन, बड़ा साबित कदम और साहिब अकल आदमी। बहरहाल उससे एक लफ्ज है बनानुन, बनानुन कहते हैं उंगलियों के सिरों को, अतराफ लसाबा, उर्दू वाले इसे पूरे कहते हैं, उंगलियों के पूरे, शायद इन्होंने पूरियां तर्जमा किया है, वो पूरी नहीं जो हलवे के साथ होती है, बल्कि उंगलियों के सिरे, सिरे यानी ये जो, बल्कि लिखा होता है ये पहली गिरा उंगली की जो है, उंगलियों की ये गिरे बनी हुई है ना, तो जो सबसे ऊपर होती है इसको बनान कहते हैं, मजमूई तौर पर ले लफ्ज बनान है। एक आदमी की जितनी हो या सारे इंसानों की पूरियों की जब बात हो रही हो तो हम बनान कहेंगे, और जब एक उंगली की बात हो रही हो तो फिर बनाना तुन कहेंगे, किसी आदमी की एक उंगली की या दो उंगलियों की या इस तरह, तो फिर बनाना तुन कहेंगे, तायता वहदत लगेगी। लेकिन बनानुन पूरी वो चीज जिसे उंगलियों के सिरे कहते हैं उसके लिए लफ्ज है, फिंगर टिप्स। तो हम तो ठीक ठाक करके बना लेंगे, कुदरत हमारी तो यह है कि उंगलियों के पूरे भी ठीक ठाक कर देंगे। अब ये उंगलियों के पूरे ठीक ठीक ठाक कर देना, फिंगर टिप्स, हमारे तफसीर वालों ने तो यही लिखा है कि वो कहता है हड्डियां कहां जमा होंगी, इंसान की बेशुमार हड्डियां हैं और उनमें से बाज हड्डियां तो बड़ी ही बारीक और छोटी छोटी बेशुमार होती हैं। आप कभी कोई बकरे के सिर पर जब पकाया जाए तो ज्यादा गल जाए तो देखते हैं उसमें कितनी छोटी बड़ी कितनी हड्डियां आ जाती है। तो इंसानी ये जो ढांचा है इसको देखा जाए तो इसमें खुदा जाने एक एक जोड़ में छोटी छोटी हड्डियां होती हैं। तो इंसानी जिसमें सबसे बारीक ये छोटी हड्डियां तो यही होती हैं जो टिप्स में, फिंगर टिप्स में, कि वो कहता है हड्डियां कहां इकट्ठी करेंगे। एक मैंने ये है कि हम तो उंगली तक की हड्डियां भी नहीं छोड़ेंगे, जो बारीक से बारीक हड्डी है, बड़ी हड्डी को तो जाने दो, वो भी हमारी कुदरत और ताकत से बाहर नहीं जा सकती। एक मायना तो यह है, उंगलियों के टिप तक पूरे कर देना, यूं कर देंगे। यह हमारी तफसीरों में आम मायना यही लिखा है कि छोटी हड्डियों का, छोटी से छोटी हड्डियों तक को हम ले आएंगे, बड़ी हड्डियों का क्या कहना, क्योंकि पहले बात हुई थी इज़ाम की, उस लिहाज से तो यह मायना तफसीर वालों ने ठीक लिखा है। यही मुराद है कि हमारी पूरी कुदरत हमें हासिल है कि हम उसको जमा कर दें और उसकी बारीक से बारीक छोटी से छोटी हड्डियां जो बनान के हैं वो भी ले आएंगे, उनको भी फिनिशिंग टच दे देंगे और जमा कर देंगे। हमारे जमाने में इस फिंगर टिप्स का, ठीक है इज़ाम और बनान और अमाम ये काफी है, या फासला आयत भी है, लफ्ज एक तरह के आ रहे हैं, खूबियत भी इबारत में पैदा होती है। लेकिन हमारे जमाने में बाज लोगों का ख्याल इधर गया है कि अल्लाह ताला ने यहां फिंगर टिप्स का क्यों जिक्र किया है अपनी कुदरत के कमाल में, और वो ये कहते हैं कि ये फिंगर टिप्स कोई मामूली चीज नहीं है। ये साबित हो चुका है कि हर इंसान का ये जो उंगलियों के सिरे होते हैं बिल्कुल अलग होते हैं, एक के दूसरे से नहीं मिलते। अब तो वो पुलिस वाले उनकी तस्वीर लेते हैं, निशान अंगूठा से फौरन पता चल जाता है कि ये उसी की उंगली या अंगूठे का सिरे का है या दूसरे का। हर इंसान का जुदा है, एक का दूसरे से नहीं मिलता, कोई ना कोई फर्क होता है। तो तो उंगलियों के सिरों को इस कमाल के साथ बनाना कि एक का सिरा दूसरे से नहीं मिलता अपने निशानात के लिहाज से, तो कमाल है। तो और यूं तो कहते हैं कि कोई चीज भी इस कायनात में ऐसी नहीं है जो बिल्कुल एक दूसरे से मिलती जुलती हो। इंसान सब एक जैसे हैं, टांगे भी, हाथ भी, आंखें भी, लेकिन कोई से दो इंसान, कोई से दो कव्वे, कोई से दो परिंदे जो आपको बिल्कुल एक जैसे नजर आए, वो हरगिज बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी नहीं होंगे, कोई फर्क होगा जरूर। ये उसके कमाल कुदरत पर दलालत करती है ये चीज। तो उंगलियों के सिरों का अलग अलग होना, बल्कि शिनाख्ती निशान होना इस बात, ये भी एक कुदरत का कमाल है। अब ये हमारे जमाने में चीज आई है, तो फिंगरप्रिंट से ये मफहूम बाज के जहन में आया। पुराने जमाने में उन्होंने यही कहा कि बात हड्डियों के जमा करने की हो रही है, और उंगलियों की हड्डियां जो है सिरों की, वो तो बहुत ही बारीक तर होती हैं, उनको भी सामने ले आना या कमाल कुदरत पर इस्तदलाल है बात। तो हम उसको ठीक ठाक बना सकते हैं। और मुराद ये है जो दूसरी जगह कुरान में बयान हुआ है, कुरान का इस्तदलाल आगे आएगा इस सूरत के आखिर में भी, कि जो पहली बार बना सकता है वो दोबारा क्यों नहीं बना सकता, यही है कुरान का इस्तदलाल। बल युरीदुल इंसानो, बात यह है कि आखिरत में जिंदा होना, अमाल, हिसाब किताब वगैरह, इंसान चाहता है कि काश ये ना ही हो। और सच्ची बात है कि काश ये सच होता कि दोबारा नहीं पैदा होना होता। ठीक है, यहां जो बदमाशे कर जाएंगे आगे तो कुछ नहीं सजा मिलेगी, मुसीबत तो यही है कि फिर किसी ने छोड़ना नहीं, दोबारा जिंदा करना है। तो बल युरीद, बल बल का मैंने है बल्कि, वो बात नहीं है बल्कि ये है असल। सिर्फ हमारी कुदरत पर उसे एतराज नहीं है कि ये कैसे बनाएगा, बल्कि उसके अंदर मन का चोर बोलता है, वो चाहता है कि मैं इसी तरह बदमाशियां करता रहूं, कोई रोक टोक ना हो, कोई हिसाब किताब ना हो, ये इंसान की ख्वाहिश है। यहां भी इंसान से मुराद बुरी किस्म का इंसान ही होगा, सारे इंसान तो सारे इंसान नहीं चाहते, लेकिन ये एक है बात कि मैं ये पसंद करूंगा कि कोई पकड़ने वाला ना हो, कोई पाबंदी लगाने वाला ना हो, कोई हिसाब किताब ना हो, करता जाऊं जो चाहूं। वो बात यहां बयान हुई है कि खुदा की कुदरत का इनकार नहीं, बल्कि वो तबई मैलान है। युरीदुल इंसानो, इंसान ये चाहता है, यानी बुरे इंसान ये चाहते हैं, ये भी लामे अहद होगा। लियफजुरा अमामहू फजरा यफजुरो, फजरा के और माना भी होते हैं, फाड़ना भी होता है, फज्र इसी से लफ्ज निकला है, इनफिजार फट जाना, फन फजरत में आपने पढ़ा है लफ्ज। तो फजरा यफजुरो के माना फाड़ना भी होता है, और उसी फाड़ना से खिलाफ वर्जी करना कानून की या बुरा काम करना, इन मानों में भी आता है, मस्दर से फर्क पड़ता है। फजरा यफजुरो फजरन, फजरा यफजुरो फुजूरन, इसका मस्दर फुजूर आता है, इसके मायने तो होते हैं बदमाशी करना, बुरा काम करना। ज्यादातर फाजिर का लफ्ज बोला जाता है जिनसी बुराई, बुरे अमल पर, उसके लिए फाजिर उसको कहते हैं जो जिनसी बुराइयों में मुबतला हो। फिर हर किस्म की बुराइयों में मुबतला होना भी इसका मफहूम होता है। फासिक फाजिर के लफ्ज इससे इस्म फाइल जो है इस्तेमाल होते हैं। ले यफजुरा, इन्होंने तर्जमा किया कि डटाई करे, डटाई का मायना है बुराई करता जाए डट के, डीट होके, कोई उसको छेड़े नहीं, कोई कुछ ना करे। आगे है लफ्ज अमामहू, लफ्जी मायना तो है अपने सामने, आगे, अमाम मैंने तो पढ़ा है आपने, जर्फ है कि अपने आगे, मुराद है अपने जो आने वाले दिन है उनमें इन्हीं कामों में लगा रहे, यह मायना भी किया गया है। अपने चाहता है कि मुस्तकबल जो मेरा थोड़ा बहुत है उसमें मैं अपने मर्जी के कामों में लगा रहूं, और इसलिए ऐसे ये लयफजोरा का मायना जरूर वो जिनसी गुनाह में नहीं बल्कि हर तरह की बुराई इसमें मुराद ली गई है। बाज ने अमामा का मायना ये भी किया अपने सामने के, वो कहता है कि भाई आज कर लिया, कल मैं नहीं करूंगा ये बुरा काम, कल तौबा कर लूंगा, और इस तरह से वो टालता रहता है आने वाले वक्त पर, वही अमामा है, और करता चला जाता है यहां तक कि मौत आती है। तो इंसान अपने मुस्तकबल के बारे में इस तरह की हरकतें करता है। तो यह बात यहां बयान हुई है कि इंसान में एक है तो सही ना, नेचुरल चीज, सबसे नेचुरल का है इंसान में बदी का भी मादा तो रखा गया है, यही तो इंसान की आजमाइश है। रखा गया है और उस पर काबू का पाने की कुदरत भी दे दी गई है, अगर पाना काबू पाना चाहे तो वो चाहता यह है कि बुरे काम करता रहूं, आगे आगे जो भी वक्त आता है मुझे कोई रोकने टोकने वाला ना हो। खुदा की कुदरत से वो मुनकर नहीं है, बल्कि बुराइयों की तरफ मैलान रखना असल उससे ये बहाने बनवाता है। तो वो जो बहाने वाली बात है, असर अंदरूनी चोर जो है उसको पॉइंट आउट कुरान ने किया है कि वो चाहता यह मुझ पर कोई गिरफ्त ना हो, कोई निगरानी ना हो, कोई ना पूछने वाला हो, तो फिर मैं जो चाहूं करूं। यस आलो अयान यौमुल क़यामा, फिर पूछता है यस आलो, आपने पढ़ा है साला यस आलो, कुरान करीम में ये इस तरह लिखा जाता है, ये के ऊपर हमजा, और वैसे तो अलिफ के ऊपर ही लिखा जाता है यस आलो। वो पूछता है अयान यौमुल क़यामा, कब होगा क़यामत का दिन। अयान मता ही के मानों में है, मता और अयाना का मैना एक ही है, यहां तक तो कब का मैना है। वैसे मता अयाना जाज़े में फेल भी है, अयाना तगरिब अवरिब, जब भी तू मारेगा मैं मारूंगा, इस तरह से ये फेल को जज़्म भी देता है। और वैसे मुतलकन इसमें इस्तफहाम के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, अयाना मता ऐना। तो अयान यौमुल क़यामा कहाँ होगा, कब होगा क़यामत का दिन। यौमुल क़यामा आपने यही पढ़ा है, इस्तफहाम को मुब्तदा कहते हैं और जो आगे सवाल के पूछा होता है उसको खबर कहते हैं। यौमुल क़यामा गोया के खबर है, कब होगा क़यामत का दिन। ये कब होगा इनकार के मानों में है कि आखिर आता क्यों नहीं। ये नहीं सवाल के हमें टाइम बता दो कैलेंडर के हिसाब से फलां तारीख या फलां दिन को आएगा वो बताओ, नहीं, ये सवाल तंज और तारीज के तौर पर है, कब होगा यानी नहीं होगा के मायने में है। सवाल गोया कि दरअसल इनकार का है, कहां होगा, कब होगा क़यामत का दिन। अब कुरान करीम ने उसकी डेट नहीं दी कि फलां सदी को फलां वक्त पे होगा, बल्कि आके उस वक्त जो कैफियत होगी वो बयान कर दी है। फैजा बरकल बसर, फिर जब ऐसा होगा कि इजा, जब यानी जब वो दिन आएगा तो फिर ये हालत होगी। बरकल बसरों, चुंधिया जाएगी आंख, बरका यब रको, बिजली का चमकना, रोशनी का तेज होना, और जब रोशनी तेज हो तो आंखें चुंधिया जाती हैं। बरकल बरको हो तो फिर तो उसका मायना होगा बिजली कोंदी, बिजली चमकी, लेकिन बरकल बसर हो, आंख तो नहीं चमकती, इसका मायना होता है रोशनी से आंख का चुंधिया जाना, खीरा हो जाना, आंख फैल आए तो फिर इसका मायना यह होता है। फैजा बरकल बसर हो, जब निगाह चुंधिया जाएगी, जाएगी का तर्जमा इजा की वजह से है क्योंकि वो शर्त के लिए है और मुस्तकबल के लिए, माजी को मुस्तकबल में बदल देता है। वखसफ अल कमर, और चांद गहना जाएगा, खसफा यखसिफ हो, इसके एक मायना बुनियादी तो होते हैं धंसा देना। फखसफ ना बहिल अर्द, हमने उसको जमीन में धंसा दिया, उसके साथ जमीन को नीचे कर दिया। चांद के लिए आए तो इसके मैंने चांद ग्रहण लगने का होता है, सूरज के लिए कसूफ आता है और चांद ग्रहण के लिए खसूफ का लफ्ज इस्तेमाल होता है। खसफ अल कमर, चांद को ग्रहण लग जाएगा और फिर इससे मुराद है उसकी रोशनी खत्म हो जाएगी। चांद ग्रहण तो एक वक्ती सी चीज होता है, लेकिन असल मायना धंस जाएगा चांद, वो मुराद बेनूर हो जाएगा, जैसे कि दूसरी जगह कुरान करीम में आया है। वजुम अशम्स वल कमर, और इकट्ठा कर दिया जाएगा, फेल मजहूल है जमा से, सूरज और चांद को, नायब फाइल होकर आए हैं यहां जुमे आके, चांद और सूरज को इकट्ठा कर दिया जाएगा। इकट्ठा कर दिया जाएगा से क्या मुराद है अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन जहां तक लफ्जों का ताल्लुक है, बाज ने कहा दोनों ही बेनूर हो जाएंगे, एक तरह से एक जैसे हो जाएंगे, यह भी मैंने हो सकता है। वैसे कोई निजाम शमसी में ऐसी गड़बड़ वाकया हो कि वो एक दूसरे से ही टकरा जाए और एक जगह आ जाए, अल्लाह बेहतर जानता है। बहरहाल मफहूम है इसका, हकीकी तो खुदा को ही मालूम है। जाहिरन तो मैंने यही है, चांद और सूरज को इकट्ठा कर दिया जाएगा और उस इकट्ठा करने में दोनों एक जैसे हो जाएंगे, दोनों बेनूर हो जाएंगे। तो ये क़यामत के उन वाक़यात की तरफ इशारा है जो दुनिया के एंड के करीब वाक़या होंगे। अब अजीब बात यह है कि तमाम नबी क़यामत के बारे में तालीम देते रहे और ये बताते रहे कि एक दिन दुनिया का एंड होगा। एक तो हर शख्स का एंड है, वो तो मौत से मफर किसी को भी नहीं, लेकिन ये कि एक ऐसा वक्त भी आएगा जब इस पूरी दुनिया का एंड होगा और उस एंड के बगैर फिर यौम हिसाब नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो जमा होता रहेगा हिसाब। एक आदमी ने कोई बदी की, 100 साल तक 1000 साल तक उसके नताइज निकल रहे हैं, वो बदी उसके खाते में लिखी जा रही है। जैसे कि हदीस में आता है कि जिसने पहला कत्ल किया तो सारे कत्लों का गुनाह उस पर भी पड़ता है। इसी तरह से कोई नेकी की, हो सकता है 1000 साल तक उसके अच्छे नताइज निकलते रहे, तो फाइनल लकीर लगा के लो अब ये हिसाब हो गया, उसके लिए कोई दिन होना चाहिए और वो दिन ये होना चाहिए कि फिर उसके बाद दुनिया खत्म हो, कोई अमल की और काम करने की फिर मोहलतें वगैरह सारी खत्म हो जाए। इसलिए इस दुनिया के खात्मे की बात अंबिया करते रहे, और चूंकि दुनिया 1000 सालों से है चल रही है, इसलिए इनकार करने वालों ने कहा कि ये तो चल रही है, चलती रहेगी, कहां इसने खत्म होना है और कौन खत्म करेगा, वो इनकार करते रहे। बजाहिर ये बात सबसे बड़ी उनकी एक दलील थी कि ये कहां खत्म होने वाली चीज है, हो तो ही नहीं सकते। अब अजीब बात है हमारे जमाने में कि वो कहते थे ये कायनात खत्म नहीं हो सकती, और अब हमारे जमाने में कम अज कम इस निजाम शमसी के बारे में जिसमें हम रह रहे हैं और जो हमारे इर्द गिर्द है, अब तो साइंस कहती है कि ये तो खत्म होगा। इंसान एटम से ना भी तबाह हो, हाइड्रोजन बम से ना बर्बाद हो जाए, जिंदगी फिर भी रह जाए, लेकिन सूरज और जमीन एक अपने एंड की तरफ जा रहे हैं। एक वक्त आएगा जब सूरज खुद ब खुद अपनी गर्मी खो बैठेगा और डेड स्टार हो जाएगा, और ऐसे डेड स्टार इस वक्त यूनिवर्स में खुदा जाने हजारों सैकड़ों हैं। सूरज भी हो जाएगा और फिर वो क्या किताबें देखे आप साइंस की कि जो उसमें उबल आएंगे समंदर के पानी और फिर जमीन ठंडी हो जाएगी, यखबस्ता हो गया, सारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। गोया कि अगर इंसान इंसानों के हाथों तबाही से, अपने हाथों तबाही से बच भी जाए, तब भी इस कुरए अर्ज की और इस निजाम शमसी की, सोलर सिस्टम की एक उम्र है जब वो पूरी हो जाएगी, खत्म हो जाए, चाहे वो उम्र मिलियन ईयर्स हो, लेकिन इसको अब साइंस तस्लीम कर चुकी है कि ये जा अपने एंड की तरफ रहा है और एक दिन ये खत्म होगा। हमारी जिंदगी में नहीं, 200 नस्लें और आ जाए, 500 आ जाए, लेकिन ये कि वो बिलाखिर खत्म होगा, वो तो अल्लाह को मालूम है बेहतर। और उसके दिनों का हिसाब तो ये है कि हमारे दिन को कहा कि वो तुम्हारे 1000 साल अल्लाह का एक दिन होते हैं, तो इस लिहाज से कायनात के खात्मे का इसमें जिक्र है। बरकल बसर व खसफल कमर व जुमे शम्स वल कमर, ये फिनोमेना होगा कोई जब ये सूरत हो जाएगी और वो खात्मे का एंड का वक्त होगा। उसके बाद फरमाया यकूल इंसानो यौम इज़िन ऐन अल मफर, ये यौम इज़िन बाद में आया है, असल में शुरू में था यौम इज़िन यकूल इंसानो, उस दिन आदमी कहेगा। यौम इज़िन में यौम नसब में है और इज़ की तरफ मुजाफ है, और असल में इबारत थी यौमा इज काना कजा व कजा, जिस दिन के यूं यूं होगा। वो जो यौमा के बाद इज था और आगे फिक्रा था, उस फिक्रे को हजफ करके उस जाल के नीचे तनवीन दे दी जाती है। ये जुन जन नहीं इस्तेमाल होता, यौमा इज इन, और बहुत से लफ्जों के साथ ये इस तरह वक्त इज इन, हीन इज इन, इन सब का मायना होता है जिस वक्त के। यौम इज़िन जिस दिन के, उस दिन के। यकूल इंसान, इंसान कहेगा, यहां भी मुराद वही लामे अहद वाली बात है, वही इंसान जो मुनकर क्यामत थे वो कहेंगे ऐन अल मफर, कहां है फरार होने की जगह। ऐन कहां, इसमें इस्तिफ़ाम है, अल मफर उसकी खबर के तौर पर रफा में आया है, फर्र या फिर्रो, فراراً بھاگ جانا, اردو میں استعمال ہوتا ہے فرار ہو گیا, عربی میں لفظ فرار ہے, فے کی زیر کے ساتھ ہے, تو اس سے اسم ظرف ہے. مفررون فرار کی جگہ, بھاگ جانے کی جگہ, مفر پھر کہاں ہے بھاگ جانے کی جگہ, اسی کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے, کہاں چلا جاؤں بھاگ کر. آپ ترجمے میں یہ غور کیا کریں, اور یہی ہمارا اصل مقصد ہے اس ترجمہ القرآن پڑھانے کا, کہ لفظی ترجمہ تو ہے انسان کہے گا اس دن کہاں ہے بھاگ جانے کی جگہ یا بھاگ جانے کا وقت, ظرف کے دونوں معنی ہوتے. اب اسی کا بامحاورہ ترجمہ دیکھیں کہ وہ کہے گا کہاں چلا جاؤں بھاگ کر, بھاگنے کا مفہوم بھی آ گیا, کہاں کا مفہوم بھی آ گیا, اینا چلا جاؤں یہاں ہے نہیں, لیکن وہ فرار میں معنی تو موجود ہے, بھاگ جانے میں چلے جانے کی سینس ہے, اس لیے انہوں نے ترجمہ کیا اس دن کہے گا کہاں چلا جاؤں بھاگ کر, یعنی میں. کل لا, لا وذر, کل لا ہرگز نہیں, یہ حرف ردع کہلاتا ہے, زور سے نفی کرنے کے لیے, جیسے کہ جھڑک کے چپ کرا دیں کسی کو. کل لا ہرگز نہیں, ہرگز نہیں اصل مفہوم ہے, یعنی جو تم کہہ رہے ہو وہ بالکل نہیں ہوگا. یہاں چونکہ اس نے کہا کہ کوئی جگہ ہے بھاگنے کی, اس لیے ترجمہ کیا کوئی نہیں, یعنی بھاگنے کی جگہ کوئی نہیں, اس معنی میں کوئی نہیں, ورنہ اصل معنی کلا کا ہے ہرگز نہیں. لا وزارا, کوئی وزر نہیں ہوگا, یہ لا کے ساتھ لا نفی جنس ہے, اس لیے وزارا کی رے کی زبر آئی ہے, یہ ماضی کا صیغہ نہیں ہے وزارا, اگرچہ اس کا ماضی یہی ہوتا ہے وزارا یا زیرو وزران, اس کا معنی بوجھ اٹھانا بھی ہوتا ہے, اور قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے ولا اللہ تذر وازرۃ وزر اخرى, بوجھ کے معنوں میں بھی. پھر ایک معنی باب افعال سے کیا جاتا ہے, کوئی اوزارا کسی جگہ کو بند کر دینا کے معنوں میں, اس کے بہت سے معنی افعال اور معنی اس میں استعمال ہوتا ہے, واو زے رے مادہ, اس سے ایک لفظ ہے وزرن, ناؤن ہے. وزرن کے معنی ہوتے ہیں کسی پہاڑ میں بڑی کوئی مشکل جگہ پہ چھپنے کی جگہ ہو جہاں تک پہنچ کوئی نہ سکتا ہو, اس کو وزرن کہتے ہیں, یا تو پہاڑ ہی بہت اونچا ہو اور اس میں کوئی چھپنے کی جگہ ہو جہاں تک رسائی ناممکن ہو سکے کسی دشمن کی یا کچھ, اس کو کہتے ہیں. پھر وزر کے معنی پناہ گاہ, چھپنے کی جگہ. انہوں نے کیا, کہیں نہیں ہے بچاؤ, یعنی بچاؤ کی جگہ, چھپنے کی جگہ, بھاگ نکلنے کی جگہ, ان معنوں میں لا وزارا, کوئی پناہ گاہ نہیں ہوگی. پناہ گاہ کے لفظ اس لحاظ سے بھی بڑا عجیب ہے کہ ہم آج کل یہی استعمال کرتے ہیں, جب ایٹم کا خطرہ زیادہ ہو گیا نا تو پھر ایٹمی پناہ گاہیں بنائی ہیں رشیا نے اور امریکہ نے, اور اس میں کہ زمین دوز ہو اس میں چلے جائیں تو پھر بچ جائیں گے, گویا کہ جو اٹامک اثرات ہوں گے اس سے, جس قسم کے اس کے اثرات ہیں اسی قسم کی پناہ گاہیں بھی بنائی گئی ہیں. تو یہاں قرآن کریم کا یہ کہنا کہ کوئی پناہ گاہ نہیں ہوگی, اس سے کوئی نہیں, ویسے بھی پناہ گاہ میں آپ ایٹم سے نہ مرے لیکن موت سے تو نہیں بھاگ سکتے باہر, وہ تو ہو سکتا ہے کہ باہر کھلے میدان میں ہی آ جائے, لیکن یہاں اس قیامت کی تباہی کے بارے میں ہے کہ کوئی بھاگنے پناہ لینے کی جگہ نہیں ہوگی, نہیں ہے. الا رب کا یوم اذن المستقر, تیرے رب کی طرف اس دن ہوگا مستقر. اصل میں المستقر یہاں مبتدا ہے, المستقر یوم اذن الى ربک, مستقر اس دن ہوگا تیرے رب ہی کی طرف. مستقر کے ابھی معنی کریں گے, یوم اذن تو وہی ہے جو ابھی اوپر گزرا ہے اس دن, اور یوم اذن کی تنوین کو آگے ملانے کے لیے زال کی ایک زیر اور ایک چھوٹا نون لکھا جاتا ہے, اس نون کو نون قطنی کہتے ہیں, نون وقایہ اور ہوتا ہے, وہ جو غرابہ نی میں نی نون آتا ہے اس نے مجھے مارا, یہ کی بجائے وہ نون وقایہ ہوتا ہے. وہ سوتوں کو گرامر والے جانتے ہیں کہ نون وقایہ کہاں کہاں آتا ہے. یہ نون پتہ نہیں اس کو کیوں کتنی کہتے ہیں, اور ادھر بر صغیر میں اس کا یہ نام ہے, اور ادھر ہی یہ لکھا جاتا ہے یوم ازن زن کی کو آگے اصل تھا زال زیر نون زن, پھر ساکن نون کو آگے ملایا تو زنل یوں بنا. اب اس نون کو چھوٹا لکھتے ہیں کیونکہ وہ اصل نون تو نہیں ہوتا, وہ تو نون کی آواز ہوتی ہے. یہ اس لیے یوم ازن لکھا ہوتا ہے. عرب ملکوں میں اور افریقی ملکوں میں یہ نہیں لکھا جاتا, وہاں یوم ازن آگے المستقر ہوگا. وہ اپنی عربی کے زور پر ٹھیک پڑھ لیتے ہیں, کیونکہ جب وہ تنوین پڑھتے ہیں اور آگے دیکھتے ہیں کہ الف لام آ رہا ہے لام تعریف, تو وہ خود بخود اس کو اس طرح ایڈجسٹ کر کے پڑھ لیتے ہیں, انہیں اس کی ضرورت نہیں ہوتی. ہمارے لیے یہ مشکل ہے کہ یوم ازن لکھا ہو آگے المستقر لکھا ہو, اور پھر المستقر کے الف پر چلیے زبر ہوتی تب بھی کوئی بات تھی, وہ بھی نہ ہو کیونکہ یہ حمزۃ الوصل ہے تو پھر ہم کیسے پڑھیں گے. اس لیے یہاں اس طرح لکھا جاتا ہے. اب رہ گیا لفظ مستقر. یہ قاف رے رے مادہ سے باب استفعال کا اسم مفعول ہے جو ظرف کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. استقر یستقر کسی جگہ قرار پکڑنا ٹھہر جانا, استقرار لازمن ٹھہر جانا پکا ٹھہر جانا. اس استقرار سے اس میں مفعول اس میں فاعل بنے گا مستقر رون, اور دراصل تو یہ فعل ہے ہی لازم. اس میں یہ تو معنی ہے نہیں کہ استقرہ میں نے کسی کو قرار دینا یا جگہ دینا اور پھر مفعول آئے, نہ یہ تو ہے ہی لازم. مستقر کہ میں نے مستقل ٹھکانہ بنا لینے والا, تو پھر یہ اس میں مفعول کیوں استعمال ہوا؟ اس لیے کہ یہ ظرف کے معنوں میں ہے. آپ نے پڑھا ہے مزید فی میں اس میں مفعول ہی ظرف کا معنی دیتا ہے. وہ مفعل والا وزن تو یہاں نہیں نہ لگتا مزید فی میں, وہ تو مجرد میں ہی لگتا ہے مفعل مفعل. مزید فی میں جو اس میں مفعول کا صیغہ ہوگا وہی ظرف کا معنی دیتا ہے. اس لیے ظرف کے معنوں میں فعل لازم سے بھی اس میں مفعول بن جاتا ہے, مگر وہ پھر اس میں مفعول والے معنی نہیں دیتا, ظرف والے معنی دیتا ہے. اس طرح سے مستقر کے معنی ٹھکانے کی جگہ, اور ویسے یہی جو ظرف بنتا ہے یا اس میں مفعول ہوتا ہے یہ مصدر میمی بھی ہوتا ہے. خود مستقر کا معنی ٹھکانہ بنانا بھی ہو سکتا ہے مصدر میمی ہونے کے اعتبار سے, میم سے مصدر شروع ہوتے ہیں اور یہ ظرف جو ہے مصدر میمی بھی ہوتا ہے. اب چاہے ظرف کے معنوں میں لے کہاں ہے ٹھکانے کی جگہ, اور یہاں انہوں نے کر لیا ہے مصدر میمی کے ساتھ کہ تیرے رب تک ہے اس دن جا ٹھہرنا. مستقر میں نے جا ٹھہرنا, حالانکہ معنی ہے ٹھہرنے کی جگہ, تیرے رب کی طرف ہی ہے ٹھہرنے کی جگہ, اور یا تیرے رب کی طرف ہی ہے جو اس دن جا ٹھہرنا, یعنی سب وہی جائیں گے. تو فاصلے کے لیے مستقر بعد میں آیا ہے, ورنہ نثر اگر اس کی کریں پیراگرافنگ کریں تو وہ تو یہی بنے گی المستقر یوم اذن الی ربک, ٹھہر جانا اس دن تو پھر رب کی طرف ہے, یعنی سب نے وہیں جا کے ٹھہرنا ہے. یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ. یومئذٍ تیسری دفعہ رہا. نَبَّأَ يُنَبِّئُ آگاہ کرنا, نون بے حمزہ مادہ, اس سے فعل مجہول ہوگا نُبِّئَ يُنَبَّأُ. نَبَّأَ يُنَبِّئُ نُبِّئَ يُنَبَّأُ آگاہ کیا جانا. یُنَبَّأُ عام عربی میں یہاں لکھ سکتے ہیں بے کے بعد ایک الف اور الف پر حمزہ دے کر یُنَبَّأُ, اس لیے کہ اس سے پہلے بے مفتوحہ ہے, لیکن قرآن کریم میں حمزے کی حرکت کے اعتبار سے واو لکھی جاتی ہے. یاد رکھیں یہ واو کوئی مادے کی نہیں ہے, یہ صرف حمزے کے لکھنے کے لیے ہے. حمزہ اوپر لکھا جائے گا یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ, آگاہ کیا جائے گا انسان, یعنی انسان کو آگاہ کیا جائے گا. ویسے وہ نائب فاعل ہے یا رفع بے. یوم اذن اس دن, وہی ظرف ہے میم کی زبر بتا رہی ہے کہ آج کا دن اس دن. बिमा नब्बा अयो नब्बे के बाद जो बात बताई जाए उस पर बेकस सिला आता है। नब्बा आहू बेकजा, उसने उसको फलां बात बताई, या अम्बा आहू बेकजा, बेकस सिला आता है उस बात पर जो बताई जाए। बिमा, उस चीज से आगाह किया जाएगा जो के कद्दमा, उसने आगे भेजी, कद्दम जो कद्दम तकदीमन, आगे भेजना, अखरा यो अखरो, पीछे कर देना, ताखीरन, बेमा कद्दमा व अखरा, जो उसने आगे भेजा जो उसने पीछे कर दिया, लफ्जी तर्जमा तो है ये। और मा मसदरी भी हो सकता है, बे तकदीम ही व ताखीर ही, यूं कर ले, लेकिन कोई खास जरूरत नहीं, उस चीज से उसको आगाह किया जाएगा। यहां कद्दमा और अखरा के बाद एक जमीर आयद माजूफ है, यानी असल इबारत बनते हैं बेमा कद्दमा हूं व अखरा हूं, उस चीज से उसे आगाह किया जाएगा जो उसने आगे भेजी या पीछे कर दी। अब यह आगे भेजी और पीछे कर दे दी से क्या मुराद है? कद्दमा से मुराद तो है जो अमल उसने आगे भेजे, फिर अखरा को पीछे दुनिया में छोड़ के आया, या तो यह मायना है जो कुछ आगे भेज सका, जो कुछ उससे रह गया ना कर सका, कोताहियां जो उसकी हैं, फिर यह मायना भी मुराद हो सकता है, जो उसने पहले काम किए जो बाद में किए यह भी मुराद हो सकता है, कि शुरू से ही जो कुछ करने लगा है और आखिर तक जो कुछ करता रहा सब बताया जाएगा। इसलिए कद्दम व अखरा में या तो उसके सारे आमाल मुराद हो सकते हैं, बहरहाल वो तफसीरों में तो बहुत लंबी थोड़ी चीजें लिखी होती हैं, और या ये कि जो वो आगे भेजा। बल इंसान हो अला नफ्स ही बसीर, तुम ये बल भी वही है, बात ये नहीं है कि हम बताएंगे, वो तो बताएंगे ही, उसको खबर दी जाएगी ये तुमने किया, शुरू से लेकर आखिर तक सारा रिकॉर्ड सामने होगा, और ये तो उस वक्त होगा, लेकिन हकीकत यह है कि उस वक्त से आने से पहले भी इंसान इतना गाफिल नहीं है, बल्कि हकीकत तो यह है कि अब भी उसके सामने अपना रजिस्टर देखे ना देखे और बात है। इसीलिए आगे फरमाया बल इंसान हो, बल्कि इंसान जो है अला नफ्स ही बसीरत, यानी बल इंसान हो बसीरत आला नफ्स ही, खबर है बसीरत, बसीर के मैंने होते हैं खूब देखने वाला, अच्छी तरह देखने वाला, क्योंकि ये फ़ईल का वजन है, सिर्फ बासिर के मानों में नहीं है, इसलिए इसका मायना होता है हर चीज को हर वक्त हर जगह देखने वाला, फिर खूब आगा जिससे छुपी हुई कोई ना चीज हो। अव्वल तो बसीर में ही एक मुबालगे का सीगा होता है, लेकिन इसमें बसीर पर फिर ते मुबालगे की लगी है, ये ते मुअन्नस की नहीं है कि बसीर उनसे मुराद हो मर्द और बसीरत उनसे मुराद हो औरत, ये नहीं है, ये ते मुबालगे की है, जैसे अल्लाम से अल्लामतुन, खाइन उनसे खाइनतुन, बहुत बड़ा खाइन, इस तरह से बसीरतुन बहुत बड़ा देखने वाला, और बसीरुन आला अपने खिलाफ के मानों में आता है, असल मायना तो आला का, वो अपने खिलाफ सब कुछ देखने वाला है, यानी अपनी बुराइयों को खूब जानने वाला है, आला के सिले से बुराइयों की तरफ इशारा होता है, वरना बसीरों ने इला भी हो सकता था, जैसे दहा लहू व दहा अलह आता है, उसके हक में दुआ की और उसके खिलाफ दुआ की, शाहिदा लहू व शाहिदा अलह, उसके हक में गवाही दी उसके खिलाफ गवाही दी, तो इसलिए वो जानने वाला है अपने खिलाफ को, यानी अपनी कमजोरियों और गुनाहों को खूब जानता है, अच्छी तरह जानने वाला है। वलौ अलका माजीरा, अगरचे, वलौ आपने पढ़ा है वाओ और लौ जब मिल के आए तो इसका तर्जमा अगरचे होता है, लौ वैसे तो अर्फ शर्त है, अलका उसने फेंका, लकिया यलका मुजर्रद में, और अलका युल्की इल्का अन बाबे इफ़ाल में, और इसका मायना होता है फेंकना डालना। अलका मूसा हसा हो, मूसा अलैहि सलाम ने अपनी लाठी फेंकी डाली, आजकल कहते हैं अलका मुहावरतन, उसने एड्रेस किया लेक्चर दिया, तो अलका का मैंने डालना फेंकना, माजीर हूं अपने बहाने, माजीर जमा है माजरतुन की, عین زال رے ازارا یا ازیرو. پھر عذرن تو عام اردو میں استعمال ہوتا ہے اور اس لحاظ سے عذر بمعنی توبہ ہی ہوتا ہے، یعنی اپنے کام کا کہنا کہ جی میں فلاں وجہ سے یہ کام نہیں کر سکا، وہ غلط بھی ہو سکتا ہے ٹھیک بھی ہو سکتا ہے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ عذر کا معنی توبہ تو ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ عذر یوں ہی بہانہ بنا رہے ہو. اس لیے ہر توبہ عذر ہے، لیکن ہر عذر توبہ نہیں ہوتا، بہانہ بھی ہوتا ہے. بہانہ ہم کہتے ہیں اسی کو ہے، ایک تو عذر ہے نا جی فلاں میری مجبوری تھی میں یہ کام نہ کر سکا، دوسرا ہے بہانہ بنانا. تو اس بہانہ بنانے کے لیے لفظ معذرتن آتا ہے، یعنی ہمارے اوپر قصور نہ ہے. تو اس معذرتن کی جمع بڑی خلاف قیاس سی جمع ہے، ورنہ معذرات جمع ہونی چاہیے تھی. جمع ہے معاذیرو، غیر منصرف جمع ہے. معاذیرہو، اگرچہ وہ ڈالے اپنے بہانے، پھینکے اپنے بہانے اور ہیلے، یہ تو ہے لفظی ترجمہ. انہوں نے ترجمہ کیا ہے اور پڑا ڈالے اپنے بہانے، پڑا ڈالے، جیسے کہہ رہے ترلے کرے پیا، وہ جو کرے پیا پنجابی میں کہتے ہیں وہی اردو میں ہے. پڑا ڈالے، کرتا رہے، ڈالتا رہے کے معنی میں آیا ہے. ڈالنا کا تو انہوں نے ترجمہ وہی القا کا کیا. پڑا ڈالے اپنے بہانے، یعنی چاہے کتنے عذر کرے اور اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرے، وہ خوب جانتا ہے کہ اس نے کیا برائی کی ہے. وہ اپنے علا نفس ہی، اپنی ذات پر نگران ہے، دیکھنے والا ہے، باخبر ہے اپنے نفس کے اعمال سے. وہ جو یوں ہی ہوتے تو لطیف ہے، لیکن انسان پہ بعض دفعہ اپلائی خوب کر جاتے ہیں. وہ ملا نصر الدین کے لطیفوں میں سے ہے کہ اس کے کھیت میں کسی کا بیل آیا تو اس تھا ڈنڈا لے کر اور بیل کو مارنا چاہا، تو بیل تو بھاگ گیا، اس کے ہاتھ نہیں آیا، ہٹایا. چند دن بعد بازار میں کہیں وہی بیل گڈ کے آگے جوتا ہوا تھا، مالک پیچھے بیٹھا تھا اور وہ اس کو بازار میں لے جا رہا تھا کوئی چیز. ملا نے دیکھا تو اس بیل کو مارنا شروع کیا. اس نے کہا بھلے آدمی بیل کو کیوں مارتے ہو، اس نے کیا قصور کیا؟ اس نے کہا چپ رہے، یہ بے حیا اپنا قصور جانتا ہے. تو ہر انسان جانتا ہے اپنے قصور کو، وہی بات یہاں کہی گئی، علا نفس ہی بصیرت، خوب جانتا ہے چاہے بہانے کتنے بنائے اور کتنے عذر کرے. لا تو یہ وہ انسانی ضمیر کی بات ہے، اور انسان کو جو خود اعمال کے بارے میں اس کو پتا ہوتا ہے، وہ اس کو پردہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، چھپانے کی کوشش کرتا ہے، جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ ساری باتیں اسی بات کا ثبوت ہے کہ سزا اور انعام ہوگا. آخر انسان یہ کیوں کرتا ہے؟ یہ ہیلا تراشیاں اور بہانے اور چھپانے کی کوششیں اور اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنا کیوں کرتا ہے؟ اس کو پتا ہے میں کوئی خلاف قانون کر رہا ہوں، اب میں ثابت کر دوں کہ نہیں میں خلاف قانون نہیں کر رہا. انسان کو دلیل کی قوت تو دی، اور کچھ نہ ہو تو قرآن کریم میں آتا ہے کہ قیامت کے دن صاف قسمیں کھائیں گے تو ہم نے تو اللہ میں یہ کیا ہی نہیں تھا جو ہمارے کھاتے میں تو ڈال رہا ہے، اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے. فیحلفون باللہ، کہ وہاں قسمیں کھا جائیں گے. تو اس طرح سے انسان خوب جانتا ہے جو کچھ، وہ اپنے قصور کو جانتا ہے. یہاں تک تو قیامت اور قیامت کے متعلقات اور مضمرات کی بات ہے کہ قیامت ہوگی، اللہ کی قدرت سے یہ کچھ بعید نہیں ہے کہ وہ ہڈیوں کو جمع کر دے، اور وہ قیامت ایک بڑا اینڈ آف دی ورلڈ یا یونیورس کو بڑا خوفناک واقعہ ہوگا. اس دن انسان گھبرائے گا اور کوئی ٹھکانہ نہیں ملے گا، اس کو سب اعمال کی خبر دی جائے گی، جو اگلے پچھلے جو کچھ بھی اس نے کیا شروع سے آخر تک. اور بلکہ بات یہ ہے کہ اس وقت سے پہلے بھی انسان اتنا غافل نہیں ہے، اپنے اعمال اور اپنے نامہ رجسٹر کے متعلق اس کو پتا ہے کہ میرے کھاتے میں کیا ہے، اتنا جاہل نہیں ہے. بنتا پھرے تو اور بات ہے. اب اس کے بعد قرآن کریم کا ذکر آتا ہے، کیونکہ قرآن کریم ہی یہ بات بتا رہا ہے. تو یہ اگلی جو آیتیں ہیں، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، یہاں جو دو دفعہ بہ کی ضمیر آئی ہے، لا تحرک بہ لتعجل بہ، اس ضمیر کے متعلق یہی کہا گیا ہے کہ اس سے مراد قرآن کریم ہے. یہاں پہلے قرآن کریم کا بیان نہیں ہوا، یہی وہ ضمیروں کے بارے میں ہوش سے کام لینے کی بات ہوتی ہے کہ کہاں کیا مراد ہے، خدا مراد ہے، رسول مراد ہے، قرآن مراد ہے. یہ مجموعی طور پر جو قرآن فہمی ہے اس کے ماتحت یہ چیز آتی ہے. لا تحرک بھی، تو نہ زیادہ حرکت دے اس کے ساتھ لسانہ کا، اپنی زبان کو. اصل لسانہ تحرک کا مفعول ہے، لا تحرک لسانہ کا بھی، تو نہ حرکت دے اپنی زبان کو. یہ لفظی ترجمہ ہے، حرک یحرک تحریکن، حرکت دینا، اور تحرک یا تحرک تحرکن، حرکت میں آ جانا، حرکہ فتحرک، اسی سے تحریک چلا دینا، اور متحرک حرکت کرنے والا اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے. تو لا تحرک باب تفعیل سے ہے، لا حرک یحرک سے، مت حرکت دے لسانہ کا اپنی زبان کو، بھی اس کے ساتھ. اب لفظی ترجمہ ہے، تو اپنی زبان کو اس کے ساتھ حرکت نہ دے اور زبان نہ چلا اس کے ساتھ، اور اسی ساتھ کا ترجمہ انہوں نے کیا اس کے پڑھنے پر، یعنی قرآن کے پڑھنے پر زبان نہ چلا، اور مراد ہے تیزی سے حرکت نہ دے. لتا اجالا بہ، اجلا یا اجالو، جلدی کرنا، اجالا اجلا یا اجالو، سامع آئی اسماء سے جلدی کرنا، اور اجلا بہ کسی چیز کے بارے میں جلدی کرنا کہ وہ جلدی ہو جائے، پھر عاجلہ ہو نہیں کہتے، کہتے عاجلہ بے قضا و قضا، اس نے اس بات کی جلدی کی کہ یہ کام میں جلدی کر لوں. یہاں پھر آیا ہے لیتا عاجلہ بے، تاکہ تو جلدی سے اس کو لے لے، یوں کر لے ترجمہ، اس کے ساتھ جلدی کرے، اور عاجلہ بے میں نے جلدی سے وہ چیز مانگنا، طلب کرنا، حاصل کرنے کی کوشش کرنا. لا لیتا عاجلہ، زبان کو حرکت اس لیے نہ دے، لام کہہ ہے، تاکہ تو جلدی اس کو حاصل کر لے، اسی کا انہوں نے ترجمہ کیا ہے، تاکہ جلدی اس کو سیکھ لے. قرآن کے بارے میں اپنی زبان کو تیزی سے حرکت نہ دے اس غرض سے کہ، یہ لام زیر لے کا ترجمہ ہوگا، اس مقصد کے لیے کہ تو اس کو جلدی سے لے لے، یعنی سیکھ لے. یہاں وہ بیک گراؤنڈ میں جو بیان کیا گیا واقعہ ہماری تمام تفسیروں میں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل جب فرشتہ لاتا تھا قرآن کریم، تو بات یہی ہے کہ دوسرے لوگوں کو نہ سنائی دے، آپ کو وہ سنائی دیتا تھا کہ وہ کہہ رہا ہے، میرے کان میں صاف آواز آتی تھی، تو آپ اس کو غور سے سنتے بھی تھے، اور چونکہ ساتھ پڑھنا ہوتا تھا، یاد کرنا ہوتا تھا، ساتھ ساتھ جلدی جلدی دہراتے تھے کہ کوئی لفظ چھوٹ نہ جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اسی لیے رک رک کر پڑھاتے تھے، بلکہ عام تقریر بھی ایسے کرتے تھے کہ اگر کوئی لکھنا چاہے تو بڑی آسانی سے لکھ لے، بعض دفعہ ریپیٹ کرتے تھے لفظوں کو، آپ پڑھتے تھے اور صحابہ سنتے تھے. اس لیے قرآن کریم کے پڑھنے پڑھانے کا طریقہ یہی ہے، اس کو کہتے ہیں تلقی اور سماع کا طریقہ، استاد کے منہ سے سننا اور لینا اور سن کے، یعنی پہلے استاد پڑھے، شاگرد سنے، پھر اس کے بعد وہ اس سے سنے. یہی طریقہ ہے قرآن کے ناظر پڑھنے کا بھی. باقی ہمارے ہاں شارٹ کٹ بعض نکالے گئے ہیں، اس سے پھر وہ تجوید کے مقاصد تو حاصل نہیں ہوتے، ریڈنگ کچھ اچھی بھلی بری آدمی سیکھ جاتا ہے قرآن کی. تو یہ بنا جو کیا گیا، گویا کہ آپ کو اس سے روکا گیا کہ آپ جلدی جلدی زبان نہ چلایا کریں بلکہ سنیں. قرآن کریم کے دوسرے مقامات بھی آتا ہے، میں بھی آتا ہے وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ، اسی آیت کی تفسیر ہے سورت وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، سورت میرے خیال میں طٰہٰ کے آخر پہ آتا ہے. تو آپ کو روکا گیا کہ سنا کریں اور یاد کرانا، جیسا کہ آپ بیان ہو رہا ہے آگے، یہ ہمارا کام ہے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہتے تھے، جب بات ختم ہوتی تو آپ کو سارے کا سارا یاد ہوتا تھا. عام انسانوں کو یاد کرنے میں چاہے گھنٹے لگے، دن لگے، اس میں بھی انسانی حافظے مختلف ہوتے ہیں، بہت ریئر سے ہی، لیکن ایسے حافظے کتابوں میں بیان کیے گئے ہیں کہ کوئی شاعر آیا بادشاہ کے دربار میں کہ جی میں نے یہ قصیدہ آپ کے لیے لکھا ہے، اور 50 شعر ہیں، وہ پڑھتا ہے. تو اکبر کے فیضی اور ابو الفضل کے بارے میں بھی یہی کہا گیا، اور لوگوں کے بارے میں بھی. وہ کہتا تھا جی یہ تو چوری کر کے لایا، یہ تو میرا قصیدہ. ایک دفعہ اس سے سنا، یاد ہو گیا. मैं सुना देता हूं। और दूसरे भाई की यह कैफियत थी कि वो दो दफा सुनने से सारा याद कर लेता था, और वो कह देता था जी तो मैंने लिखा है, और अगर आपको गवाह मतलूब है ये मेरे भाई से पूछ ले, क्योंकि अब उसने दो दफा पढ़ चुका था उसको भी याद हो जाता था। तो रेयर हाफजे ऐसे होते हैं कि एक दफा ही सुनने से याद हो जाए, नबी के हाफजे की तो फिर क्या कहना। तो और फिर खुदा ने खुद गारंटी दी, तो आप सुनते थे चाहे जितना हिस्सा कुरान का नाजिल हो और फिर आपको याद हो जाता था। उसके बारे में है कि आप जल्दी जुबान ना चलाएं, इस तकलीफ की कोई जरूरत नहीं, ताकि आप उसको जल्दी जल्दी सीख लें, कुछ भूलने ना पाए। आगे आता है इन्ना अलैना जमाअहु व कुरआनहु, बेशक हमारे ऊपर है यानी हम पर वाजिब है, यह हमारा जिम्मा है। अलैना जमाअहु, यह जमाअहु की नसब इन्न की वजह से है, इन्न जमाअहु व कुरआनहु अलैना, उसका जमा करना और उसका पढ़ना ये हमारे जिम्मे है। कुरान करा यकराओ का एक मसदर है, करा यकराओ किराअतन व कुरआनन मसदर है, इसका लफ्जी मैंने पढ़ना ही है। फिर मसदर बमाना इस्म फायल इस्म मफूल, जिसको पढ़ा जाए इन मानों में भी इस्तेमाल होता है, और कुरान करीम का जो नाम है वो इन्हीं मानों में है जिसको बकसरत पढ़ा जाए। और वाकई नाम ही कुरान करीम का ऐसा है कि गालबन इस वक्त दुनिया भर में मजहबी किताबों की कमी नहीं है, एडिशन शाये होने में शायद कुरान से बीसों गुना आगे बढ़ गए हों बाइबल वाले, वो तो लाखों हजारों की तादाद में छापते हैं, और होटलों में जहां कोई जाके ठहरता है एक बाइबल मुफ्त चलो जी ले जाओ, छपते होंगे। लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब कुरान करीम है, हकीकत यह है। इसको वो भी पढ़ते हैं जो इसको कुछ भी नहीं समझ सकते कि इसमें क्या है और क्या बात नहीं कही गई। हर मुसलमान तिलावत करता कुरान करीम की, उसकी उसको पाबंद किया गया है तिलावत करने का। तो दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है, और अजीब बात है कि खुद उसके नाम में ये पढ़ा जाने वाला मफहूम मौजूद है। तो यहां जो है कुरान ये मसदर है पढ़ाना। और देखिए कुरान के माना यानी मसदर ले तो पढ़ाना और पढ़ना दोनों मुराद हो सकते हैं, क्योंकि करा यकरा कुरआनन व कुरे यकरा कुरआन, मसदर फेल मारूफ मजूल का एक ही होता है, इसलिए पढ़ाया जाना पढ़ना दोनों मुराद हो सकते हैं। और इसीलिए इन्होंने तर्जमा किया है उसको जमा करना तेरे सीने में, यह तो वजाहती है, और पढ़ना तेरी जुबान से। असल माना तो हम पर है उसका इकट्ठा करना, हम पर है उसका पढ़ना, और इस लिहाज से वो पढ़ना और जमा कैसे होगा, वजाहती तर्जमा किया है, तेरे सीने में उसको इकट्ठा करना यह भी हमारा काम है, तेरी जुबान से उसका पढ़ना पढ़ा जाना यह भी हमारा काम है, हम तेरी जुबान से पढ़वाएंगे तेरे सीने में जमा करेंगे, ये तो है जरूरी। तो यहां अल्लाह ताला ने खुद अपने जिम्मे दोनों चीजें ले ली, और जमा से मुराद हिफ्ज कराना, सीने में जमा करना यानी याद कराना कि भूलने ना पाए, जैसा कि कुरान करीम में दूसरी जगह आया है सनुकरे उकफला तानसा, हम आपको पढ़ाएंगे कि फिर तुम भूलोगे नहीं। तो यह अल्लाह की खास देन थी, उसी की तरफ यहां भी इशारा है, इन्ना अलैना जमाअहु व कुरआना, हु की जमीर फिर वही बिही के लिए आई है, कुरान के लिए है, जो दो दफा पहले आया ना ला तो हर्रिक बिही लेता अजल बिही, इन्ना अलैना जमाअहु यानी जमाअल कुरआन व कुरआनहु यानी कुरआनल कुरआन, तो फिर उसका जमा करना और पढ़ना हमारे जिम्मे है, यानी आपके सीने में उसको इकट्ठा करना याद रहे और आपकी जुबान से उसका पढ़ा जाना, ये दोनों हमारे जिम्मे है, आप पढ़ेंगे भी और नहीं भूलेंगे। बस जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अलैना जमाअहु व कुरआना फैज़ा क़रअनाहु फत्तबिअ कुरआना, पहले इससे कवैसे कल तर्जमा हो गया था, इन्ना अलैना बेशक हमारे ऊपर है यानी हमने अपने जिम्मे ले रखा है, जमाअहु उसका इकट्ठा करना, जमा यजमा और इकट्ठा करने से मुराद है हिफ्ज कराना, और इसीलिए इसका तर्जमा किया जाता है सीने में जमा करना, आपके सीने में जमा करना उसका, व कुरआना और उसका पढ़ाना, करा यकराओ से जो मस्दर बनेगा वो कुरे यो कुराओ का भी मस्दर होगा, मारूफ मजहूल मस्दर तो एक ही होता है, इसलिए कुरआनहु का मायना ये भी हो सकता है उसका पढ़ना, और उसका पढ़ा, पढ़ा जाना यानी पढ़ाना, दोनों ही मफहूम इस मसदर के हो सकते हैं। तो इस लिहाज से यहाँ दूसरा मायना मुराद है, उसका आपके सीने में जमा करना और उसका पढ़ाना आपकी ज़ुबान से, यानी ये हमारे ज़िम्मे है। फ़ैदा क़रअना हो, बस जब हम उसको पढ़ें। यहाँ देखिए क़ुरान दो जगह आया, आगे भी आ रहा है, और क़रअना अगर ज़बर ज़ेर ना हो और नुक्ते भी बल्कि ना हो तो ये लफ्ज़ एक जैसे हैं। पहला है क़ुरान हो, वो मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह तरकीब है, ये जो है ये है क़रअना हो, हमने पढ़ा। क़रअ का माजी का सीगा है, क़रअ तो क़रअना, हमने पढ़ा। क़ुरान करीम में ये जो ना ज़मीर मरफू मुत्तसिल होती है, जो जमा के माजी के सीगे में आती है, मुतकल्लिम में, ग़रबना, कतबना, जलसना वगैरह में, ये क़ुरान करीम में इसके बाद अगर कोई ज़मीर मफूल आ रही हो तो फिर नून अलिफ ना का अलिफ गिरा के गिरा देते हैं, लिखने में फिर वो नहीं लाते। आम अरबी में उल्टा यूं लिखना गलत है, करा ना हो को नून अलिफ ना लिखना चाहिए और फिर हो होना चाहिए, क्योंकि इसमें ये भी शुबा रहता है कि करा ना हो ना हो, उन औरतों ने पढ़ा, क्योंकि वो भी तो सीखा करा ना ही लिखा जाएगा, और उसके बाद अगर हो लगे तो जो मोनस का सीखा उसी तरह लिखा जाएगा। कुरान करीम में फिर जब्त से कि नून की ज़बर नहीं है, नून की खड़ी ज़बर है, फिर इस तरह पढ़ते हैं करा ना हो। लेकिन ये कुरान करीम की पक्की इमला है कि ये ज़मीर मरफू मुत्तसिल वाला माजी का सीगा जहाँ भी आएगा और उसके साथ कोई मफूल ज़मीर हो, अगर इसमें ज़ाहिर है तो फिर नहीं, करा ना हो तो फिर वो अलिफ नहीं लिखते। करा ना हमने पढ़ा, फैज़ा इज़ा चूँकि शर्त का है इसलिए तर्जमा हो सकता है जब पढ़े हम हो उसको, मफूल है जब हम उसको पढ़ें। अब यहाँ जब हम उसको पढ़ाएं मजहूल नहीं हो सकता, यानी पढ़ा जाना अगर मसदर ले तो ये वैसे भी नहीं बन सकता, क्योंकि आगे एक हु ज़मीर लगी हुई है, तो ये माजी का सीगा है कराना, और फिर ये भी मजहूल अगर होता तो फिर कुरे ना होता, मसदर तो नहीं है ना, वो तो सीगा है। तो यहाँ करा ना हमने पढ़ा उसको, अब यहाँ पढ़ाना नहीं तर्जमा हो सकता जब हम उसे पढ़ाएं, क्योंकि करा या कराओ का मैंने पढ़ाना नहीं होता, मसदर के माने आ जाए तो वह और बात है कि किरात उनका मैंने पढ़ना और पढ़ा जाना, लेकिन फेल का तर्जमा तो या मारूफ में होगा या मजहूल में होगा। जब हम उसको पढ़े यही तर्जमा यहाँ हो सकता है, दूसरा कोई तर्जमा ही नहीं हो सकता। जब हम उसको पढ़ने लगे, वो मुहावरे के लिए कर लिया है, असल मैंने तो ये जब हम उसे पढ़े, यानी पढ़ने लगे ठीक है, जब पढ़ना शुरू करें मुराद हुई है, लेकिन यहाँ कोई ऐसा फेल नहीं है जिसका तर्जमा ये किया जाए। तो अब यहाँ अल्लाह ताला ने अपनी तरफ निस्बत दी है उसके पढ़ने की, हालांकि पढ़ते तो जिब्रील थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो उनकी आवाज़ सुनाई देती थी, इसलिए यहाँ अल्लाह ताला के फ़ेल को, चूँकि जिब्रील उनकी तरफ से ही आगे पैगाम पहुँचा रहे हैं, उसको कहा गया जब हम पढ़े, यानी हमारी तरफ से एक तरह से जब वो पढ़ा जा रहा हो, क्योंकि ज़मीर फ़ाइल जो ज़मीर तज़ीम है वो यहाँ मुराद जिब्रील के ज़रिए से पढ़ना है। वो कुरान करीम में दूसरी जगह आता है 25वें पारे के में, वमा कान अल बशर न युकल्लिमहुल्लाह, किसी इंसान के लिए ये नहीं है कि अल्लाह उससे कलाम करे, मगर वहाँ तीन ज़राए बताए हैं कि इस तरीके पर कलाम किया जाता है, फरिश्ते के ज़रिए और या आवाज़ सुनाई दे या कुछ। तो वो कुरान करीम की उस आयत के मुताबिक जिब्रील का पढ़ना वो खुदा का पढ़ना ही है, यानी खुदा की तरफ से लाना। तो जब हम उसको पढ़े, पढ़ते हैं, पढ़ेंगे, इज़ा की वजह से तो सारा तर्जमा हो सकता है, और यहाँ इन मानों में कि रोका जा रहा है कि आप जल्दी जल्दी ज़ुबान ना हिलाएं उसको याद करने के लिए, तो हमारा काम है, तो उन मानों में उन्होंने कर लिया जूँ ही पढ़ने लगे। हालांकि यूँ ही का मायना नहीं है इज़ा का, जब हम पढ़ने लगे या पढ़ें, बात एक ही है, फत्तबे तू पीछे चल, इत्तबा कर, तबे यतबा पीछे चलना, और उससे बाब इफ्तेआल आएगा, इत तबा यत्तबे ते मुदगम हो जाती है, शद से पढ़ी जाती है, उसका फेल अमर है, फत्तबे तू इत्तबा कर, तू पीछे पीछे चल। कुरान ये फत्तबे का मफूल है, यहां फिर वही कुरान पढ़ना के मायने में है, यहां कराना नहीं है, जो ऊपर आया जमा हो वह कुरान वही कुरान है यहां, तो तू उसके पढ़ने के पीछे पीछे लग, लफ्जी तर्जमा तो ये बनता है, तो इसीलिए इन्होंने तर्जमा किया है, बल्कि तशरीही तर्जमा किया है, जब हम पढ़ने लगे फरिश्ते की जुबानी, ये फरिश्ते की जुबानी तफसीरी तर्जमा है, लफ्ज नहीं है यहां, लफ्ज तो यही है जब हम पढ़े, तो जब फरिश्ते की जुबानी हम पढ़ने लगे फत्तबे कुरान, इन्होंने तर्जमा किया तू साथ रहे उसके पढ़ने के, इत्तबा का मैंने पीछे पीछे साथ रहना होता है, तो साथ रहे उसके पढ़ने के, यानी उसको गौर से सुनता रहे, यहां इत्तबा ज़हनी मुराद है कि उसको बस सुनते रहो, उसके पीछे पीछे गुआ के चलो, ज़हन आपका उसको सुन रहा हो तो पीछे पीछे चल रहा हो, इसी को इन्होंने साथ रह से तर्जमा किया है, असल तर्जमा है पीछे पीछे रहे, फॉलो करो उसको, उसके पढ़ने को फॉलो करो, यानी उसके पीछे रहो, और मुराद है यहाँ उसको लफ्ज लफ्ज को सुने गौर से, यहाँ कुरान फिर उसी मानों में है कुरान पढ़ना उसका, और हु की ज़मीर ये सब कुरान करीम के लिए आ रही है, जमा हु कुरान हु कराना हो कुरान हु, ये सब ज़मीरें हु जहाँ जहाँ भी आए ये कुरान करीम के बारे में है। सुम्म इन अलैना बयान हु, फिर सुम्मा मैंने फिर इसके बाद, सुम्मा में तरतीब और बल्कि मातराखी होती है, यानी चाहे कुछ वक्फा भी दरमियान में आ जाए, तो गोया के पढ़ चुकने के बाद फिर फौरन ही तो नहीं होगा, आहिस्ता आहिस्ता होगा बयान उसका, इसीलिए सुम्मा आया है, फिर उसके बाद का मफहूम भी सुम्मा में है। इन्ना अलैना वही लफ्ज ऊपर वाले हैं, फिर हम पर ही है, ये भी हमारे जिम्मे है, बयान हु बयान की नसब इन्ना की वजह से है, जैसे ऊपर इन्ना की वजह से जमा हु और कुरानहू में आई थी, ये देखें जो पहला कुरान हुआ है वो इन्ना की वजह से मनसूब है, फत्तबे कुरान फत्तबे का मफूल होने की वजह से मनसूब है, यहाँ फिर बयान इन्ना की वजह से मनसूब है, इन्ना बयान हुआ अलैना उसका बयान फिर हमारे जिम्मे है, बयान बान यबीन बयानन इसके मायने होते हैं वाज़े कर देना भी और वाज़े हो जाना भी, खुद इस मस्तर को लाजिम मुतादी दोनों तरह इस्तेमाल किया जाता है, यहां करना के मानों में आएगा, इबारत का तकाजा यह है, और फिर उसका वाजे करना भी हमारे जिम्मे है, वाजे करना से मुराद उसकी बारीकियां समझाना, उसकी इम्प्लीकेशंस की तरफ तवज्जो दिलाना, उसकी वजाहत करना, अमली तौर पर उसे नाफिज कैसे किया जाएगा, ये उसकी जो तफसीरी और वजाहती बारीकियां हैं वो सब बयान में आती हैं, फिर हमारे जिम्मे है उसको खोल कर बतलाना, इन्होंने बयान का तर्जमा किया है खोल कर बतलाना, वही मायना है वाजे करना, वाजे कर देना, तो उसका बयान करना भी हम कर देना, यानी उसकी वजाहत भी समझा देना, ये भी हमारे जिम्मे है, यहाँ बयान गोया क्या हम उसको बयान करेंगे, असल तो मैंने ये बनता है उसकी वजाहत करेंगे, वजाहत क्या अपनी तरफ से बोल कर करेंगे, यहाँ इसीलिए किया गया आपको बतलाना उसकी वजाहत हमारे जिम्मे है कि आपके जेन में डालना और आपको समझाना, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह से कुरान की तफसीर की है या वजाहत की है या नाफिज किया है वो इसी बयान हु में आता है सारे का सारा, और इस लिहाज से ही हुज्जत है कि आपने कुरान के बारे में जिस तरह आपने समझा और नाफिज किया वो सारी उम्मत के लिए वाजिबुल इत्तबा है, उसी के पीछे चले, ये जो मुनकरीन सुन्नत है उसकी उनकी पहली गुमराही यही है कि वो सुनते कुरान अरबी की किताब है, हम जैसे समझ लें जो मायना आ जाए वही है, सुन्नत को क्या ज़रूरी है सामने रखना, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये कि हम उसका समझाना ये हमारे ज़िम्मे है, अल्लाह ने आपको समझाया आपने उसी तरह सिर्फ पहुँचाया नहीं, बाकायदा बोल 23 साल का अरसा थोड़ा नहीं है, और आखिरी 10 साल तो खैर बड़े रैपिडली ये काम हुआ था, वो आपने उसको नाफिज किया समझा समझाया, तो उसकी वजाहत कर देना कि बारीकियों तक ले जाना, बारीकियों को तक ले जाना इसलिए भी तर्जमा करते हैं कि बयान में उसमें जो फनी खूबियां हैं इल्म मानी बयान के एतबार से उसे कहते ही इल्म मानी बयान है, यानी उसमें जो अदबी बारीकियां होती हैं और उससे फिर बात निकलती है वो असल में बयान होता है। वजाहत के कई पहलू हो सकते हैं तो इसलिए वजाहत में सब कुछ आ जाता है, उसको खोल कर बतलाना ये भी हमारे जिम्मे है। कल्ला, ये दरमियान में फिक्र है कुरान करीम के मुताल्लिक आए हैं, और ये कोई बईद बात नहीं है कि कुरान करीम का पहले क्यामत का जिक्र हो फिर कुरान का, क्योंकि कुरान ही सारा क्यामत के बारे में बता रहा है, आगे फिर क्यामत का जिक्र आ गया है, इसलिए कुरान करीम ही का तो क्यामत के बयान से बड़ा ताल्लुक है। साथ ही फिर वो आता है कल्ला, हरगिज नहीं, यानी तुम किसी गलत ख्याल में ना रहो। जैसे वहां आया था ना कि इंसान सवाल करता है कब क्यामत होगी और ये होगा वो होगा और ये बहाने हैं, असल में तो उसका जी चाहता है कोई रोकने टोकने वाला ना हो और मैं लिफ जो रहमामा करता जाऊं जो मेरी मर्जी हो, ये तो बहाने हैं कब होगी क्यामत और कैसे होगी और ये होगी, फिर क्यामत का बयान आया था। यहां भी इस तरह से कुरान के बयान के साथ एक लिंक हो सकता है कि कुरान को सुनने जानने के बावजूद फिर भी गलत रास्ते पर पड़ा रहे, तो उसकी एक वजह हो सकती है। बल तो हिब्बून अला आजलाता, यहाँ खतरनाक है दुनिया से मोहब्बत करना, ये फिर रुकावट बनती है। जिस तरह से वो एक चीज़ है कि रोक टोक ना हो और मैं जो चाहूँ करता जाऊँ, इंसान चाहता तो ये है, तो कुरान तो रोक टोक करेगा। अब इसके बाद अगर कोई गलती की वजह हो सकती है तो एक और आमिल है और वो है हुब आजला, तो हिब्बून बल तो बल्कि के मानों में है अहब्बा युहिब्बु मोहब्बत करना, चाहना पसंद करना। तो हिब्बूना हैबे बे मादा से, तुम पसंद करते हो, तुम चाहते हो, तुम मोहब्बत करते हो। आजला उसका मफूल है आजला को, आजला के लफ्जी मैंने हैं जल्दी आने वाली या जल्दी करने वाली, आजला या आजालो के मैंने हैं जल्दी करना या जल्दी कर डालना। उससे आजिलुन इस्मुल फाइल मुज़क्कर और आजिलतुन इस्मुल फाइल मुअन्नस होगा। आजिलतुन जल्दी आने वाली, और साफ जाहिर है कि ये एक सिफत है, इसका एक मौसूफ यहां माजूफ है, मसलन अल हयातुल आजला, अल मनफियातुल आजला, जल्दी हासिल होने वाला नफा, जल्दी आने वाली जिंदगी, जल्दी हासिल होने वाले नताएज, जो भी कर लें आजला का कोई मफूल मौसूफ यहां महजूफ है। तुम जल्दी आने वाले नताएज की मोहब्बत रखते हो कि जिसके नतीजे जल्दी जाहिर हो, आज पैसे लगाएं और थोड़े ही अरसे में ज्यादा माल बन जाए, अगर कोई लंबी इन्वेस्टमेंट हो तो आप भी सोचता है कि इसका तो कोई फायदा नहीं, ये सारा कोऑपरेटिव का भट्ठा इसी सूद की ख्वाहिश में ही बैठा है, जिनके पैसे डूबे हैं वो सब सूद के लालच में मारे गए हैं कि जहां ज्यादा पैसा मिलता है वहां लगाओ। तो इंसान की कमजोरियों में से एक वो बताई थी कि वो चाहता है मुझे कोई रोके टोके नहीं, जो करता जाऊं करता जाऊं। दूसरे फिर ये कि रोक टोक भी हो तो वो आजला की मोहब्बत गालिब भी आ जाती है, फिर वो रोकने टोकने वाले की शायद बार दफा परवाह ना करे। तो जल्द आने वाली, इन्होंने इसीलिए तर्जमा किया, तुम चाहते हो जो जल्द आए, आए तो खैर फेल है, यानी जल्द आने वाली को। और चूंकि ये मुअन्नस का लफ्ज है, कोई मुअन्नस मौसूफ आफ लगा सकते हैं, अल हयातुल आजला, अल मनफियतुल आजला, अल फवायदुल आजला, अल मफादातुल आजला, कोई आप ऐसा मौसूफ इसके साथ लगा सकते हैं। तो यानी हयात दुनियावी, क्योंकि इसके नताइज तो जल्दी सामने आते हैं, नफा नुकसान सामने मालूम होता है, आखरत का तो बड़ी लंबी बात है, सजा हो तो और इनाम हो तो। इसीलिए आगे कहा वतज़रून अल्लाखिरा, और तुम छोड़ते हो, वज़ारा याज़ारो, ये ज़ाल के साथ है वज़ारा याज़ारो, और इसका माजी तो बहुत कम ही इस्तेमाल होता है, मुजारे और फेल अम्र ज़रू ज़र ये ज़्यादा कुरान में इस्तेमाल हुआ। ये एक ऐसा फेल है जिसकी माजी कम इस्तेमाल होती है या ना होने के बराबर ही है, वैसे आती है वादारा यादारो। तो यादारो का मैंने छोड़ देना, زال کے ساتھ یاد رکھیے, زے کے ساتھ ہو تو وزرا یزر میں نے اٹھانا ہوتا ہے, بوجھ اٹھانا. تذرون تم چھوڑتے ہو, چھوڑے دیتے ہو, الآخرتا, آخرہ مفعول ہے وزر یزر تذرون کا, آخرت کو. آخرت کے لفظ میں نے پہلے ہو چکے ہیں, سب سے آخر پر آنے والی, اخیر پر آنے والی, آخر آخرن آخرتن مذکر مؤنث ہے, آخرن سب سے آخر پر آنے والا, اگر مذکر موصوف مذکر ہو مثلا والیوم الآخر وہاں پھر مذکر کا لفظ لگا ہے. یہاں جو آخرہ مؤنث ہے یہ بھی صفت ہے, اور اس سے پہلے بھی ایک موصوف معذوف ہے. وتذرون الحیات الآخرہ, جو بھی لگا لے, الدار الآخرہ آخرت والے گھر کو, آخرت والی زندگی کو چھوڑتے ہو, یعنی اس کی پرواہ نہیں کرتے. چھوڑتے ہو سے مراد ہے نظر انداز کرتے ہو, اس کا خیال نہیں کرتے کہ وہاں نتائج کیا نکلیں گے. یہ بھی انسان کے اندر ایک کمزوری ہے, جہاں وہ چاہتا ہے میں بے روک ٹوک کام کروں, وہاں یہ بھی کہ فوری فوائد بھی اس کی نگاہ ہوتی ہے. اور اسی فوری فوائد میں یہ روز جو اخباروں میں ہم پڑھتے ہیں جی, وہ نوٹ دگنے کرانے میں زیور بھی گما بیٹھے اور یہ وہ, یہ سب اور ٹھگی فراڈ دنیا میں بھی جو ہوتے ہیں, ضرور فوری فوائد پر نگاہ رکھ کر ہی آدمی مرتا ہے. تو یہ بھی کہ انسان کی کمزوری ہے. اس دنیا میں بھی سوچ سمجھ کر بعض ذرا لانگ ٹرم پروجیکٹ بناتے ہیں کہ یوں فائدہ ہوگا, لیکن بعض سوچتے ہیں کہ دو دن میں ہی اپنا سرمایہ وصول ہو جائے. تو اس کمزوری کا یہاں ذکر کیا ہے, اور اس پر قابو پانا کیسے ممکن ہے کہ آخرت یاد ہو, جزا و سزائے اعمال یاد ہو, کہ نتائج یوں بھی ظاہر ہو سکتے ہیں, تم ان جلدی کے نتائج پر نہ جاؤ. اسی لیے آگے فوراً قیامت کے اس خوفناک حساب کتاب کا ذکر ہے. وجوہ یومئذ ناظرۃ, کچھ چہرے, وجوہن وجہن کی جمع ہے, کچھ چہرے یومئذ اس دن ناظرۃ تر و تازہ ہوں گے یا ہیں. یہاں ایک بات قابل غور یہ ہے کہ وجوہن نکرہ ہے, لیکن آیا مبتدا ہو کے ہے, نکرہ مبتدا نہیں ہوتا, عام طور پر بعد میں جائے تو ہوتا ہے, لیکن بعض شرائط ہوتی ہیں کہ اگر وہ کوئی مبتدا کا معنی دینے کی اس میں صلاحیت ہے اور ایک عموم پیدا کرنا ہے تو نکرہ بھی مبتدا ہوتا ہے. قرآن کریم میں آیا ہے کہ والا امتم مومنتن خیر من مشرکتن, کہ جو مومن لونڈی ہے وہ مشرکہ سے بہتر ہے. اب وہاں بھی اسی طرح سے مبتدا ہو کے آیا ہے, یعنی ہر ایک کے معنوں میں. یہاں اس طرح سے یہ مبتدا بن گیا ہے, وجوہن, کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو کہ تر و تازہ ہوں گے. اس ان معنوں میں وجوہن مبتدا, الذی یا وہ نہیں لگایا, وجوہن اور یہ ناظرہ اس کی صفت ہے. یوم اس دن صفت نہیں, خبر ہے. اس دن کچھ چہرے ناظرہ ہوں گے, ناظرہ یان دورو اور نظرہ یان دارو, ناصرہ سے بھی آتا ہے, سامعہ سے بھی آتا ہے. اس کے معنی تر و تازہ ہونا بھی ہوتے ہیں, تر و تازہ کر دینا بھی ہوتا ہے. درخت ہو, چہرہ ہو انسان کا جس پہ رونق ہو, شادابی ہو, اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. نظرہ تو اس کا مصدر ہے, قرآن کریم میں بھی آیا ہے تعارف فی وجوہہم نظرۃ النعیم, کہ تم ان کے چہروں میں نعمتوں کی شادابی دیکھو گے. چہروں سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ خوش ہیں اور شاداں ہیں, رونق جسے چہرے کی کہتے ہیں. اور درخت کی شادابی اور تر و تازگی کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے. اس سے یہ اسم فاعل ہے ناظرۃ, جس میں تر و تازگی اور رونق ہے, وہ درخت ہو یا چہرہ ہو, یہاں چہروں کے بارے میں آیا ہے. اور ناظرۃ مؤنث آیا ہے وجوہ ان کے لیے, کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے, رونق والے ہوں گے. ہوں گے ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اگلے کسی آنے والے زمانے کی بات ہے یا وقت کی, ورنہ تو اس جملہ اسمیہ میں ہے کے ساتھ ہی ترجمہ ہوتا ہے. کچھ چہرے ہیں تر و تازہ, ترجمہ تو یوں بھی ہو سکتا ہے, الى ربها ناظرۃ, اپنے پروردگار کی طرف دیکھنے والے ہوں گے. اردو میں ہم ان مؤنث کا ترجمہ مذکر کی طرح کر رہے ہیں, کیونکہ وجوہ کا ترجمہ جو چہرے کیا तो फिर नाजरा का मैंने भी तरोताजा यानी रौनक वाले और इसी तरह नाजरा देखने वाले, वरना तो नाजरा तो उनके मैंने देखने वाली मुअन्नस है वजूह उनके लिए, और वो देखने वाली होंगी यानी देखने वाले होंगे वो लोग जो उन चेहरों वाले हैं जिनके चेहरों की रौनक की बात हो रही है, वो चेहरे देख रहे होंगे यानी उन चेहरों वाले देख रहे होंगे। इला रब्बिहा अपने रब की तरफ, नाजेरा नाजरा यान जोरों से इस्म फाइल है, ये तो आसान सा वर्ब है। नजारा इला नजारा इलेहे नजारा हु कम ही कहते हैं शायद, बल्कि ना इस्तेमाल होता होगा मेरे ख्याल में, आमतौर पर कहते हैं नजारा इलेहे उसने उसकी तरफ देखा, टू लुक एट के मायनों में आता है। तो वो देखने वाले होंगे अपने परवरदिगार को, मुजक्कर में तर्जमा हुई वजूह के मालकों के लिहाज से हम कर रहे हैं, अपने रब की तरफ देखने वाले यानी वो उसको देखते होंगे देखेंगे। यहां एक मसला हमारे यहां खासा कलामी किसी जमाने में तो बहुत जोर का था, आजकल वो जोर शोर तो नहीं रहा लेकिन किताबों में है। मोतज़िला जो थे जरा रैशनलिस्ट थे, अकली तवजीहात कुरान के करते थे, तो बास चीजों में उनका आम जमहूर मुस्लिमीन से इख्तलाफ था। इस आयत की रोशनी में और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाज़ा हदीस की रोशनी में ये बयान हुआ है कि मरने के बाद जो आने वाली ज़िंदगी है उसमें मोमिनों को अल्लाह का दीदार होगा। अब वो दीदार किस तरह होगा ये खुदा बेहतर जानता है, लेकिन चूंकि उसका जिक्र है हम उसकी कैफियत नहीं समझ सकते। दीदार में तो फिर एक सिमत भी मुतय्यन करनी पड़ती है ना कि वो है सामने, फिर दूसरी जगह वो ना हो। और खुदा के बारे में आप ये नहीं कह सकते कि वो एक जहत और एक सिमत और एक फिक्स्ड पॉइंट पे है, हर तरफ नहीं है। लिहाजा फिर जमहूर मुस्लिमीन ने कहा जी वो बेकैफियत दीदार होगा, लेकिन चूंकि उसका कुरान में और हदीस में जिक्र आया है हमारा ईमान है कि दीदार मोमिनों को होगा और वो देखेंगे रब को। मोतज़िला इसका इनकार करते थे, वो कहते थे ये मुमकिन ही नहीं है कि खुदा को कोई देख सके, बात वैसे कोई इतनी गलत भी नहीं है, इन आंखों से तो कोई नहीं देख सकता और उसकी फिर कैफियत भी क्या होगी अल्लाह बेहतर जानता है। इसलिए हमारे यहाँ बाद चीज़ों को ईमान में मुजमल तौर पर मान लिया गया है। अल्लाह ताला अर्श पे बैठा जम के, बाद ने कहा जी वो बिल्कुल बैठता है जैसे हम बैठते हैं जम के, और ये इस अर्रहमान वाला अर्श इस्तवा, ये बल्कि एक ज़माने में बगदाद में नारा था दो फरीकों का, और एक इसको नारे को लगाता थे दूसरे कहते थे ये गलत है कहना, तशबीह बनती है। तो इसीलिए जमहूर मुस्लिमीन के अकीदे इस बारे में यह है कि हम कैफियत नहीं जानते, जो कुरान ने बयान किया हमारा ईमान है वह दुरुस्त है, किस तरह जहूर होगा उसका हम नहीं जानते। इसी में ये रोयत बारी ताला अल्लाह ताला को देखना भी था। अब इस आयत से मोतज़िला के ये खिलाफ जाती है, क्योंकि इसमें तो क्लियर है और हमको देखने वाले देख रहे होंगे देखने वाले होंगे। तो जनाब आदमी जब सोचने पर आ जाए ना तो कुछ न कुछ हासिल कर ही लेता है, ये कब्र परस्ती हो या जो कुछ भी हो, हर एक शख्स कुरान की कुछ न कुछ आयतों से अपने ढब कुछ निकाल ही लेता है। यहां बाज गालिब मोतज़िला ने यह कहा कि ये जो इलाह है ये हर्फ जार है ही नहीं जनाब, ये तो इलन अलिफ लाम ये एक मादा है अली या ला, और इसके एक बुनियादी माने होते हैं दुम्बे की चक्की बड़ी होना, इलिया अलिया कहते हैं दुम्बे की चक्की को, उससे फिर इलन अलिफ लाम ये लिखा जाता है, लाम पे दो जबरे होती है इलन और शायद इलियुन भी होता है और अलन भी होता है, इसके माने होते हैं नेमत, और इसी की जमा है आला उन फबे अय्ये आला ए रब्बे कुमा तो कर रे बान, वो इस इलियन या इलियन तो नहीं इलन वाहिद में रहता है ज्यादा या आलन होता है, इसकी जमा है आला, ये तो इसमें तो कोई इनकार कर नहीं ना सकता। अब अगर इलन के मायने हैं नेमत तो इला रब्बे हा मुजाफ हो गया अपने रब की नेमत, ये तो मायने यूं भी बन जाता है इला रब्बे हा नाजरा अपने रब की नेमत को देखने वाले होंगे, यानी वो नेमतों को देखेंगे जो उनको रब की मिली होंगी। जी ये इलाह तो अर्फ जार है ही नहीं। अब देखिए कि लुघवी बहस में आप ये कह सकते हैं कि ये इसका इनकार नहीं कर सकते कि इलाज यहां मैंने नेमत लिया जाए और फिर मुजाफ कर दिया जाए, बिल्कुल इसी तरह बनेगा। इल्लाह है, इल्लाह है का मायना ये हो सकता है, जैसे आपने वो मुअम्मा पढ़ा है ना, अन्ना ज़ैदुन करीमिन, ये भी एक तरह का मुअम्मा ही बनता है इस तरह से। इसीलिए हमारे यहाँ ये जो पुराने अरबी ग्रामर वगैरह पढ़ाते हैं ना, इसमें बाज़ किताबें हैं जिसमें ग्रामर के मुअम्मे ही बयान किए हुए होते हैं कि ये बूझो तो जाने। और चुनाचे एक छोटी सी किताब है, उसके बाद मसाइल हैं इल्म सीखा के आखिर पर, और ये जवाना मुई, पता नहीं उसके नाम किसने रखा था क्या, उसके इसी तरह मसाइल बयान होते हैं। वो दरअसल पजल्स ही होते हैं ग्रामर के, कि ये लफ्ज़ क्या है, इसकी असल बताओ तो जाने। फिर आदमी वो सोच सोच के बाज़ दफ़ा चकरा जाता है, बाज़ दफ़ा ठीक भी पहुंच जाता है। तो ये उस तरह का मुहम्मा तो बन जाता है कि इला रब्बे हा का मैना करें, अपने रब की नेमत को देखने वाले होंगे। बात जब निकाली लुगत के जोर पे, मुअतज़िला ने ये माना तो निकाल लिया, लेकिन वो बाकी हदीसों और उस सब के, और यहाँ फिर वैसे भी अजीब कुछ आउट ऑफ प्लेस सा माना मालूम होता है, इला रब्बे हा नाजरा उतने के साथ, ऊपर वाली इबारत के साथ कि वो अपने रब को देखने वाले होंगे, बड़ा मौजूम है ना। बाकी रह गया फरोजत बारी ताला किस तरह होगी या क्या, तो वो कोई कैफियत वगैरह की तफसीलात में जाना ज़रूरी नहीं है। इन्होंने इसीलिए तर्जमा किया अपने रब की तरफ देखने वाले, ये वाले इसलिए भाई जागते रहो कोई बात ऐसी, देखने वाले होंगे ये इसलिए कि वजू से मुराद चेहरों वाले आदमियों की बात हो रही है। कुछ चेहरे ऐसे होंगे यानी बाज़ लोगों के चेहरे ऐसे होंगे जो तरोताज़ा होंगे, और वो लोग अपने रब की तरफ देखने वाले होंगे। वो वजू हुई यौमैज़िन बासिरतुन, ये दूसरा पहलू है, कुछ तो तरोताज़ा और रौनक में होंगे जिनका अंजाम अच्छा होगा, और कुछ चेहरे उस दिन बासिरा होंगे, बेसीन रे मादा, बासेरा याब सारो और बासारा याब सेरो के भी कई माना है। वक्त से पहले किसी काम का हो जाना भी इसका माना होता है, और एक माना इसका है चेहरा बुरा बनाना, किसी मुसीबत या तकलीफ के एहसास से जो चेहरे पर असर उसका जाहिर होता है उसको बसर कहते हैं। और इस लिहाज से बासेरा याब सारो का माना है चेहरा सुकेड़ा, चेहरा बिगाड़ा, चेहरे पर बेरौनकी आ गई। इन मानों में कुरान करीम में आता है दूसरी जगह बासारा सूरत मुदस्सिर में आया है, उसने मुंह बिगाड़ के बात की, मुंह सुकेड़ के कहने लगा, यानी इसमें मुंह बनाने में हो सकता है नफरत का इजहार हो सकता है अफसोस और मुसीबत का इजहार हो, क्योंकि इन मौकों पर चेहरा जो है आदमी का बिगड़ जाता है, उस पर असरात जाहिर होते हैं। तो इसलिए यहां इन्होंने क्या उदास हैं, उदास वो कि गम के असरात और अफसोस के असरात उनके चेहरों पर जाहिर होंगे। वजूहुन बासिरतुन, ऐसे चेहरे जिन पर गम और मुसीबत का असर बड़ा वाजे है, नागरा के मुकाबले पर है, वो तरोताजा है। तो इसका तर्जमा मुरझाए हुए कहें, सुकड़े हुए कहें, वो तर्जमा हो सकता है इसका। तो कुछ चेहरे उस दिन बासिरा होंगे, मुरझाए हुए होंगे, उदास होंगे, बिगड़े हुए होंगे, उन पर वाशत बरस रही होगी, जिस तरह भी तर्जमा करें ये बासेरा में।